things are possible.
आइए हम कुछ क्षण प्रार्थना में खड़े रहें और अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, हम इसे एक महान अवसर मान रहे हैं जबकि आज रात हम यहाँ हैं, जबकि इस समय में जीवित मसीह को इस मृत प्राय दुनिया और मुर्दा पीढ़ी के सामने लाना है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शब्दों और चेष्टाओं को अभिषिक्त करें ताकि वे तेरे लिए बेकार साबित न हो, वरन वे उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जिसके लिए वे कहे गए हैं। हर एक उस मनुष्य, स्त्री, लड़के या लड़की की आज रात आप सहायता करें जो यहाँ हैं और जरूरतमंद हैं। और पिता, हम जानते हैं कि हम सभी की आवश्यकताएं हैं, और आज रात जब हम यहाँ से जाएं, तो हम अपने मनों में उन लोगों की तरह की उत्तेजना अनुभव करें जिन्होंने एमाउस के मार्ग पर जीवित मसीह की गवाही दी। उन्होंने कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था तो हमारे हृदय में क्या उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु, इस विनती को स्वीकार करें। आप बीमारों और दुर्बलों को चंगा कीजिए। काश आज रात प्रार्थना सभा के बाद हम में से एक भी जन दुर्बल न रहे, और सबसे बड़ी बात ये हो कि यहाँ प्रभु एक भी अविश्वासी न रहे। काश सभी अनंत जीवन पर यकीन कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ जमा होने का उद्देश्य यही है। यह आशीषें हम परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। कृपया बैठ जाएं। आज रात फिर से यहाँ आना भला लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग चारों ओर खड़े हैं। मैं सोचता हूँ कि अब बहुत से नगरों के लिए, ट्यूसान, सैन फ्रांसिस्को आदि पूर्वी शहरों के लिए टेलीफोन प्रसारण शुरू हो चुका है। हम टेलीफोनों के द्वारा उन्हें शुभकामनाएं भेजते हैं। आज रात हम यहाँ इस सभागार में हैं। मुख्य सभागार खचाखच भरा है और गलियारे में और चारों तरफ दीवार के साथ लोग खड़े हैं, और हम समझते हैं कि कल रात हम यहाँ व्यायामशाला की ओर का द्वार खोलने की कोशिश करेंगे और हमें एक बड़ा सभागार मिल जाएगा जिसमें शायद कई हजार लोग और बैठ सकेंगे। अतः हम आशा करते हैं कि कल रात, यदि आज की पहली रात उसकी सामर्थ्य मिलती है, तो हमें विश्वास है कि कल की रात और भी अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरी होगी। और मैं देख रहा हूं कि आज रात भी यहां उन्होंने अतिरिक्त कुर्सियां आदि का इंतजाम किया है। हमें बड़ी आशाएं और पूर्वानुमान है। पहले तो ये कि प्रभु यीशु आ रहा है। दूसरी बात ये है कि वे गुमराह आत्माएं अपना उद्धार पाएंगी जो आज रात उसे ग्रहण कर उसके आने के लिए तैयार हो जाएंगी जबकि वो जाहिर होगा। मैं मंच पर बैठे सभी बढ़िया लोगों को, जिनमें से मैं सोचता हूँ अधिकांश सेवक हैं, मैं विशेष शुभकामनाएं देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। कई सौ लोगों के यहाँ मंच पर बैठने की व्यवस्था है और वो बैठे हैं, और हम वास्तव में धन्यवाद देते हैं कि वे यहाँ आए हैं। हम आप सभी लोगों के कृतज्ञ हैं जो इस देश के विभिन्न भागों में हमारे संग हैं। मैं समझता हूं कि कुछ लोग समुद्र पार से आए हैं, अतः हम आप सभी के कृतज्ञ हैं कि आप यहां हमारे साथ इस सहभागिता का आनंद लेने आए हैं, जिसके बारे में हम आशावान हैं कि परमेश्वर हमें इस सभा में वह आनंद देने जा रहा है। जब मैंने यहां आकर कुछ दिनों तक सभाएं करने का विचार किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अपने हृदय में आश्चर्यजनक रूप से ऐसी बड़ी अनुभूति भर गई कि कुछ न कुछ घटित होने ही वाला है। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, मगर वह जरूर परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला एक बड़ा प्रकाशन है। उसके जरिए हम तैयार हो सकेंगे और उसके राज्य के उत्तम नागरिक बन पाएंगे, जबकि हम इस समय की पापी, अविश्वासी और अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं। यह स्थान, ये जगह जहाँ इस समय हम हैं, आज रात मेरे लिए एक बड़ी बात की यादगार है। जब से मुझे पता चला कि यहाँ पर उन्होंने इस स्कूल का सभागार बनाया है, तब ही से मैं चाहता था कि इस जगह पर एक प्रार्थना सभा करूँ। मैं स्कूल बोर्ड और उन सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने बड़ी अनुदारता से हमें ये जगह दी है। आज रात जहाँ ये भवन खड़ा है, यही कहीं वैसा हुआ था। लगभग 30 साल पहले इसी जगह पर वो महान घटना घटी थी। उस समय ये जगह झाड़ियों से भरे एक मैदान से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। मैं उस समय यहाँ से लगभग 200 गज की दूरी पर एक छोटे से मकान में रहा करता था। उन दिनों में मैं अपने माँ और बाप के उद्धार के विषय में बहुत सोचता था। आज रात वो दोनों ही नहीं हैं, और उन दिनों में मैं खास तौर से अपने पापा के लिए परेशान था। मुझे याद है कि मैं ड्योढ़ी में सो रहा था और वह गर्मियों के दिन थे, मौसम गर्म था। मेरा ख्याल है कि ये वृतांत एक छोटी पुस्तक जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर में दिया गया है, अथवा इसका जिक्र उस किताब में है जिसका शीर्षक है आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू द हेवनली विजन, यानी कि मैं स्वर्गीय दर्शनों के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं था। और ओसारे में लेटे हुए सहसा मेरी आंख खुल गई और अपने पिताजी के लिए मेरे हृदय में एक बड़ा बोझ आया। जैसा कि आप में से शहर के बहुत से लोग मेरे पिताजी के बारे में जानते हैं, मैं सोचता हूं कि वो बड़े शानदार व्यक्ति थे। हालांकि वो एक पापी थे, उनमें एक बुरी आदत थी और वो शराब पीने की आदत थी, जिसके विरुद्ध पूरे पिछले काल में मैं इतनी जोर से लड़ता रहा हूं जितना कि लड़ सकता हूं। और उस रात वो शराब पी रहे थे और मैं उनके लिए हृदय पर बड़ा बोझ अनुभव करते हुए जाग गया। और बस मैंने अपने पजामा पर ही पैंट चढ़ाई और कमीज पहनकर उठ गया। जहां आज ये भवन बना हुआ है, लगभग इसी स्थान पर मैं उस समय के झाड़ियों वाले मैदान में बाहर टहलने लगा। मैं घुटनों के बल झुककर अपने पापा के लिए दुआ करने लगा, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि खुदा तू उन्हें बचा ले और उन्हें एक पापी के रूप में न मरने दे क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और प्रार्थना करते हुए मैं खड़ा हो गया और इस जगह से पूरब दिशा की ओर देखने लगा, और वहाँ मुझे एक दर्शन दिखाई दिया, और वहाँ ठीक मेरे ऊपर प्रभु यीशु खड़ा था, जैसे कि आप में से बहुत से लोग इस दर्शन के बारे में जानते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं दृष्टि भ्रमों के प्रति संवेदनशील नहीं हूँ, मगर दर्शन वास्तविक होते हैं। वहाँ यीशु मसीह खड़ा था और पहली बार मैं उसे इस प्रकार से दर्शन में देख रहा था। शायद वो मेरे सर से बस 10 फुट की दूरी पर बीच हवा में खड़ा था और उसका एक पग आगे उठने की मुद्रा में था। उसने श्वेत वस्त्र पहना हुआ था और उसके वस्त्र के छोर पर गोटा लगा था। उसके बाल कांधे तक थे और वह एक मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा था, और जैसा पवित्र शास्त्र बताता है वह लगभग 30 साल की आयु का दिख रहा था, मगर वह अत्यंत दुबला पतला और छोटा सा मनुष्य दिखाई दे रहा था। ऐसा दिखाई दे रहा था मानो उसका वजन 130 पाउंड से अधिक न हो। मैंने उधर देखकर सोचा कि जरूर कुछ गलती हो रही है, आंखें धोखा खा रही हैं। अतः मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से उसे देखा और वह बगल से दिखाई देने वाली मुद्रा में था, और उसका चेहरा एक ओर से दिखाई दे रहा था, और उसके चेहरे की रूपरेखा वैसी ही थी जैसी मैंने हमेशा दर्शनों में देखी है, और वो शक्ल हाफमैन के चित्र में मसीह के चेहरे की तरह थी, जिस चित्र का अंग्रेजी शीर्षक है क्राइस्ट एट 30, यानी 30 वर्ष की आयु में मसीह। यही वजह है कि हाफमैन का वो चित्र मैं अपने सभी साहित्य पर और अपने घर में रखता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं इस चित्र को सजा सकता हूँ, सजाता हूँ, क्योंकि यीशु की मुखाकृति यानी शक्ल उससे बहुत अधिक मिलती है। बस फर्क ये है कि दर्शन में वो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था, और जब मैं उसकी ओर देख रहा था, मैंने सोचा मैं यकीनन अपने प्रभु को वहाँ खड़े नहीं देख रहा हूँ, ये भ्रम हुआ है। अब मैं कहूँ कि मैं वहाँ इस तरह से खड़ा था, और शायद वो यही स्थान रहा होगा जहाँ अब ये मंच बना है, यही कहीं ठीक इसी के आसपास की जगह रही होगी। जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ, वहाँ से मेरे अंदाजे के मुताबिक लगभग 40 या 50 गज के घेरे में ये सब हो रहा था। मैंने ऊपर नजर उठाई और देखा वो वहाँ खड़ा था, और मैंने अपनी उंगली मुंह में दबाकर काटी कि कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ। आप जानिए कि यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, और मैं उस समय प्रभु में बच्चा ही था, बस 6 महीने से ही प्रचार कार्य कर रहा था। मैंने अपनी उंगली में काटा, मैंने एक झाड़ी की तीली तोड़ी, और जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वे जानते हैं कि उसका अगला भाग दांत कुरेदने वाली तीलियों की तरह से होता है। मैंने उसे चबाना शुरू किया, मैंने सोचा ये नहीं हो सकता, मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ? देखो उधर मेरा घर है, वहाँ मेरे पापा और मामा और बच्चे रहते हैं, केवल इस स्थान से 200 गज की दूरी पर ईंटों का बना वो तालाब है जिसमें से मैं बत्तखों का शिकार किया करता था। और मैं यहाँ मैदान में खड़ा हूँ। नहीं, ये स्वप्न ही है। मैंने जमीन पर पांव से ठोकर मारी और पैर में थोड़ी ठेस लगी। मैंने सिर को झटका, हाथों को मला, मैंने उधर ऊपर देखा, फिर दूसरी ओर देखा, फिर से उधर देखा और वहाँ खड़ा था। और हवा चलने लगी थी और मैंने झाड़ियों को हवा से हिलते देखा, और जब हवा चलने लगी तो उसका वस्त्र भी हवा से लहराने लगा, ठीक वैसे ही जैसे एक रस्सी पर टंगे कपड़े लहराते हैं। वो वहाँ खड़ा था और मैंने उसकी ओर देखा। मैंने सोचा कि मैं उसके चेहरे को देख सकूं, और वो पूरब की ओर देख रहा था और ठीक इस ओर को वो बड़ी तल्लीनता से देख रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया कि घूमकर उसके चेहरे को नजदीक से देख सकूं, और तब भी मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया। उसने अपने हाथ आगे को फैला रखे थे जो मुझे वहाँ से दिखाई नहीं दे रहे थे जहाँ मैं खड़ा था। और मैं फिर से घूम गया और मैंने अपना गला साफ करने के लिए खंखारा। मैंने सोचा कि मैं उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकूं, मगर वो जरा भी नहीं हिला। तब मैंने सोचा कैसा हो कि मैं उसे पुकारूं। जब मैंने पुकारा यीशु, उसने अपना सर घुमाया और उसने मेरी ओर देखा, तो उसने बस अपनी बाहें फैला दी। बस इतना ही मुझे याद रहा कि लगभग दिन निकल गया। उस मैदान में इसी जगह पर कहीं मैं पाँव फटने तक पड़ा रहा था। मेरा पाजामा और कमीज उसी जगह पड़े हुए पूरी तरह आंसुओं से तर हो गए थे, जहां मैं रो रहा था और गुमसुम सा हो गया था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें कोई भी चित्रकार ना तो उतार सकता है और ना ही रंग सकता है। वे ऐसा कर ही नहीं सकते। वो एक ऐसे आदमी सरीका दिखाई दे रहा था कि अगर आप उसकी ओर देखें तो सहानुभूति से भर कर रोने लगेंगे और आप आदर और भक्ति से भर उठेंगे। और इस पर भी उसमें से ऐसी सामर्थ्य झलक रही थी कि यदि वह कुछ बोल दे तो मानो दुनिया ही उलट जाए। उसकी मुखाकृति या चेहरे के भाव कोई चित्रकार कभी नहीं पकड़ सकेगा। आज के दिन तक मैं कभी भी नहीं जान पाया हूँ कि इसका क्या मतलब था, मगर 30 सालों के बाद आज रात मैं यहाँ खड़ा हूँ, उस सभागार में हूँ जो अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया गया है, और मैं तो बस एक साधारण सदस्य हूँ। यहाँ के स्थानीय बैप्टिस्ट चर्च में से एक वरिष्ठ सदस्य हूँ। उस समय यहाँ के गिरजे में राय डेविस पादरी थे, और मैं आज उसी स्थल पर खड़ा हूँ जबकि यहाँ पूरी जगह लोगों से भरी हुई है। और यहाँ मेरे खड़े होने का उद्देश्य मेरी समझ में ये है कि स्वयं यीशु मसीह के खून से खरीदे गए लोगों को मेरे हाथों में सौंपा गया है कि उन्हें प्रभु का 4 दिवसीय सुसमाचार दिया जा सके। उसके ठीक 6 महीने के बाद मैं अपनी पहली बपतिस्मे वाली सभा उस नदी तट पर कर रहा था। वहाँ वह प्रकाश उस स्प्रिंग स्ट्रीट पर उतर आया था। आप में से बहुत से लोग वहाँ जाकर उस जगह को शायद देखना चाहेंगे। ठीक नदी के सामने जल में स्प्रिंग स्ट्रीट पर वो प्रकाश उतरा था। इसी जगह पर प्रभु का स्वर्गदूत पहली बार सर्वसाधारण के सामने जाहिर हुआ था। दोपहर 2 बजे का समय रहा होगा, और उस प्रकाश में से एक आवाज आई और कहा गया, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मसीह के प्रथम आगमन के आगे आगे भेजा गया था, उसी तरह तुम्हारा सुसमाचार जो तुम प्रचार करोगे वह मसीह की दूसरी आमद के आगे आगे चलेगा। तब से अब 30 साल बीत चुके हैं और मैं आज रात भी उसी सुसमाचार की घोषणा करता चला आ रहा हूँ। पूरी दुनिया में ये सुसमाचार पहुँच चुका है। मैं आज रात अपने शहर में लौटकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर सकूँ। उस यीशु को मैं आज भी पूरे दिल से प्रेम करता हूँ, और हर एक दिन पहले से भी मधुर बनता जा रहा है मेरा यीशु। मैंने अपने सिद्धांत में एक बिंदु भी परिवर्तन नहीं किया है। पहली बात जिसे मैंने शुरू में कहा था, उसी पर मैं आज रात भी विश्वास करता हूँ। वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब मेरे पास एक सुसमाचार है जिसके प्रति मैं उत्तरदायी हूँ। जब ये सुसमाचार शुरू में आया था, तब यकीनन ऐसा था। हर कोई बीमारों के लिए प्रार्थना करने लगा था, और बड़े बड़े अद्भुत काम व चिन्ह प्रकट हो रहे थे, चमत्कार दिखाए जा रहे थे, और ये सब खास तौर से पिंतेकोस्तल लोगों में शुरू हुआ था। वह एक विश्व स्तरीय चंगाई देने वाला बेदारी का समय था जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। मैं सोचता हूँ कि पूरे 15 सालों तक हर एक जगह पर बेदारी छाई रही, बेदारी की आग सुलगती रही। वास्तव में लाखों लोगों ने उस एक ही सेवकाई के काल में मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। उसकी प्रेरणा ओरल रॉबर्ट्स से लेकर और बहुतों के द्वारा चारों ओर फैलती गई। जबकि पिंतेकोस्तल गिरजा जैसा तब भी था, उसी रूप में मुर्दा सरीखी गिरावट में पड़ा रहा। आज रात मेरा उद्देश्य और इरादा व इच्छा उसी गिरजे को फिर से जगाने की है जबकि प्रभु यीशु का आगमन द्वार पर है। मुझे उसे झिड़कना है, मुझे गुनाह को झिड़कना ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मेरा मतलब किसी के व्यक्तिगत नामधारी गिरजे से नहीं है। मेरे पास एक सुसमाचार है। अब देखिए कि किसी गिरजे में उसके द्वारा सभा आयोजित कराना बहुत मुश्किल है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि अब भी वही है, मैं नहीं हूँ। मगर जैसे कि पहले उसने प्रचार किया और बीमारों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, यहाँ तक तो हर किसी ने उसे चाहा। मगर उसके बाद एक सुसमाचार आता है जो चिन्हों के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि चिन्ह में शब्द होता है। जब एक दिन यीशु वहाँ बैठा था, तब उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। ये बात इतनी कड़वी थी जिसे वे सहन नहीं कर सके। ऐसा ही तब था जब उसने कहा था कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू को न पियो तो तुम में कुछ जीवन नहीं। और किस तरह से तब डॉक्टर्स और अधिक बुद्धि विचार वाले लोगों ने यही कहा होगा कि यह मनुष्य तो नरभक्षी है, यह आपको अपना मांस और लहू खाने की बात कर रहा है। यीशु ने उनको इस बात का अर्थ नहीं समझाया, बस केवल उनसे ये कहा था। और आज रात आप इस सभा में बहुत सी बातें सुन सकेंगे जिन्हें हम शायद समझाने के योग्य नहीं हैं। मगर याद रखिए कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और हम इस पर विश्वास करते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम बहुत सी बातें करें, क्योंकि एक खास समय पर ही हमें सभा शुरू करनी है और तय समय पर समाप्त करनी है। हम स्कूल बोर्ड के इस समय संबंधी नियमों का सम्मान करना चाहते हैं जो उन्होंने तय किए हैं। हम इन बातों का सम्मान करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। याद रखिए कि जिस किसी समय भी कोई पापी जन जब मसीह के पास आना चाहे तो वो सीधा यहाँ आ सकता है, चाहे मैं उस समय वचन प्रचार कर रहा हूँ, गीत गाया जा रहा है या कुछ भी और किया जा रहा है। और ठीक उसी समय जब चाहे अपने जीवन को मसीह को अर्पित करने के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं। और यही वो वजह है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कि आपकी मदद कर सकें। मैं भाई वेल, भाई बॉर्डर्स और दूसरे भाइयों के साथ बात करना चाहता हूँ। अगर वो कलीसिया में दोपहर को या किसी रात या किसी और समय बपतिस्मे संबंधी निर्देश सभा आयोजित कर सकें, जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उन्हें इस बारे में उचित निर्देश दिए जा सकें। भाई नेविल, भाई कैप्स और आप सभी भाई लोग, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? क्या आप सभी इकट्ठा हो सकेंगे? कोई अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता है तो उसके बारे में मार्गदर्शन के लिए आए। आप इसके लिए इस आराधनालय में क्यों नहीं आते? भाई ब्रैनम पता करते हैं कि कितने बजे आना है। लगभग 10 बजे प्रातः आप आ जाएं। यदि इस सुसमाचार या सिद्धांत के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो, और अगर कभी किसी ने व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ नहीं सिखाया हो, या आप प्रार्थना करवाना चाहते हो, या और कुछ बातें जानना चाहते हो, तो आप क्यों ना 10 बजे सुबह आ जाएं और इन सेवकों से मिलने। वहाँ इनमें से कोई एक या अधिक सेवक मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यह आपके प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल अपना जानकर देंगे। आप बस उनके पास जाएं और वे लोग जिस प्रकार भी संभव होगा आपकी सहायता करेंगे। अब इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम इस वचन के लेखक को एक बार फिर से पुकारें। आप खाना बहुत अधिक खा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पानी बहुत पी लिया है, आप बहुत अधिक हंस सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आप चले हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत अधिक प्रार्थना कर ली है। मैं तो वैसा मनुष्य होना चाहता हूँ जो पवित्र हाथ उठाकर बिना संदेह के सब जगह प्रार्थना करता रहे। आइए हम प्रार्थना करें। यारे यीशु, जीवन के वचन के रचयिता, आप स्वयं वचन हैं। उस दर्शन के बारे में बताने और समझाने के बाद हम अब विनम्रता पूर्वक आपके पास आए हैं, ताकि परमेश्वर आप मेरे गवाह हैं कि वह सब सच है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात मेरे मुंह से जो वचन निकले उसे अभिषिक्त करें, कि वह शब्द दिव्य आवाज बनकर हर एक कान में सुनाई दे सके। अगर यहाँ या बाहर देश भर में कोई भी ऐसे जन पाए जाएं जो इसे सुन रहे हों, जो इस घड़ी के लिए अभी तैयार ना हो, जो परमेश्वर के इस सुसमाचार और समय की ललकार को ग्रहण करने के काबिल ना हो, जो पश्चाताप करने और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अभी तैयार ना हो, जो कि निकट आ पहुंचा है, तो हमारी प्रार्थना है कि आज रात ऐसा हो जाए कि वो समय की पुकार और चुनौती को स्वीकार कर सकें। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सहायता करें। मैं जानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और इसका क्या मतलब है, और मुझे न्याय के दिन इसका उत्तर देना जरूर है। जो कुछ मैं यहाँ कहता हूँ, یا اور کہیں کہتا ہوں، سب باتوں کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ اے پرمیشور پربھو، تیرے وچن کے بارے میں جو بھی میں کہوں یا کروں اس کے پرتی پورن روپ سے وفادار رہوں، تاکہ وہ پھلدائی بن سکے۔ جیسا کہ تو نے آگیا دی ہے کہ میرا وچن تیرے مکھ سے کبھی جدا نہ ہو، ویوستا کی یہ پستک تیرے چت سے کبھی اترنے نہ پائے، اسی میں دن رات دھیان دیے رہنا، اس لیے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے انوسار کرنے کی تو چوکسی کرے، کیونکہ ایسا ہی کرنے سے تیرے سب کام سفل ہوں گے اور تو پربھاوشالی ہوگا، اور تب ہی تو پھلے پھولے گا۔ اور کیا میں نے تجھے آگیا نہیں دی؟ ہیا باندھ کر دڑھ ہو جا، بھے نہ کھا، تیرا من کچا نہ ہو، کیونکہ جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں تیرا پرمیشور یہوا تیرے سنگ رہے گا۔ پربھو یشو، آج رات ایسا ہی ہونے دے۔ ہم یہ پرارتھنا یشو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ شکروار اور شنیوار 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک 8 پین اسٹریٹ پر استھت آرادھنالیہ میں صلاح اور نردیش آدی دیے جائیں گے، سدھانتوں سمبندھی پرشنوں کے اتر دیے جائیں گے، اور بیماروں کے لیے پرارتھنا ہوگی اور بہت کچھ ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی مدد آپ چاہتے ہیں تو وہاں آئیں، وہاں لوگ موجود رہیں گے جو یہ سارے معاملے دیکھیں گے۔ پربھو آپ کو آشیش دے۔ اب اس آج رات کی ادگھاٹن سبھا میں میں اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ سیدھے سوسماچار کو شروع کروں، اسی کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں، اور اسی کے پرچار ہیتو میں یہاں پھر سے آیا ہوں۔ رویوار کی پرات اگر پربھو کی اچھا ہوئی تو میں آج کے دن کی اس بڑی چنوتی کے بارے میں وچن پرچار کروں گا جو کہ وواہ اور طلاق سے سمبندھت ہے۔ اب گلتیوں کی پستک میں سے میں ادھیائے 4:27-31 پد تک وچن پڑھنا چاہتا ہوں۔ گلتیوں کی پستک ادھیائے 4:27-31، کیونکہ لکھا ہے کہ ہے بانج تو جو نہیں جنتی آنند کر، تو جس کو پیڑائے نہیں اٹھتی گلا کھول کھول کر جیکار کر، کیونکہ تیاگی ہوئی کی سنتان سہاگن کی سنتان سے بھی ادھک ہے۔ اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح پرتیجیا کی سنتان ہیں، اور جیسا اس سمے شریر کے انوسار جنما ہوا آتما کے انوسار جنمے ہوئے کو ستاتا تھا، ویسا ہی اب بھی ہوتا ہے۔ پرنتو پوتر شاستر کیا کہتا ہے؟ داسی اور اس کے پتر کو نکال دے، کیونکہ داسی کا پتر سوتنتر استری کے پتر کے ساتھ اتراधिकारी نہیں ہوگا۔ اس لیے ہے بھائیو، ہم داسی کے نہیں پرنتو سوتنتر استری کی سنتان ہیں۔ پرمیشور پربھو اپنے وچن کے پڑھے جانے پر آشیش دے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس میں سے میں ایک عجیب اور اسادھارن سا وشے چن لوں، مگر کبھی کبھی انہی عجیب اور اسادھارن سے چھڑوں میں ہمیں خدا مل جاتا ہے، انہی اسامان طریقوں اور باتوں میں وہ ہوتا ہے، کیونکہ پرمیشور ایسا دھارن ہے، اور جو ہردے سے اس کی سیوا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ دنیا کی ریت سے الگ ایک اسادھارن ریتی سے اس کی سیوا کرتے ہیں۔ اس وشے کو یوں کہا جائے گا کہ بھوسی کے سنگ بیج وارث نہیں ہے۔ یہاں پر پولوس ابراہیم کے دو دنیاوی پتروں کے شاریرک ریتی کے ونش یا بیج کے بارے میں بتا رہا ہے۔ پولوس یہاں پر آنندت ہو کر سوئم کو سوتنتر استری کی سنتان کے استر پر رکھ رہا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ دو وبھن استریوں کے دوارا ابراہیم کے دو پتر تھے، اسے سارہ کے دوارا پوری ہونے والی ایک واچا دی تھی، سارہ کے دوارا ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کے دوارا ساری دنیا آشیش پائے گی، ساری جاتیاں اس پتر کے دوارا آشیشت ہوں گی۔ اور یہودی لوگ سادھارن طور سے یہی وشواس کرتے تھے کہ وہ بیٹا اسحاق تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم کا یہ وعدہ کیا ہوا پتر یشو ہے، اور وہ ابراہیم کا پرتیجا کیا ہوا شاہی بیج یا ونش ہے، مگر ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک ہاجرہ سے تھا جو اس کی پتنی کی لونڈی تھی، وہ ایک سندر پیاری سی مصری استری تھی جسے ابراہیم نے مصر میں اپنی پتنی کی لونڈی ہونے کے لیے چنا تھا۔ سارا نے یہ سوچا تھا کہ پرمیشور اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سچا اور سکشم نہیں ہے، اسی لیے اس نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اس کی لونڈی ہاجرہ سے وواہ کر لے، ان دنوں میں بہو وواہ قانون تھا۔ उसने कहा कि उसी से वो संतान प्राप्त कर ले और प्रभु की यही मंशा है कि वो केवल हाजिरा से पुत्र प्राप्त करे। मगर हम पाते हैं कि खुदा की मंशा ऐसी नहीं थी। अब हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर तीन की संख्या में सिद्ध या पूर्ण होता है। अब देखिए कि परमेश्वर की पूर्णता की गिनती तीन होती है। अनुग्रह की संख्या पांच है। सात दुनियादारी की पूर्णता है। परमेश्वर या खुदा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में पूर्ण और सिद्ध है। यह परमेश्वरत्व की पूर्णता है। एक परमेश्वर है जो तीन विभिन्न स्थितियों में प्रकट हुआ या तीन गुणों में आया, अथवा एक ही परमेश्वरत्व में तीन स्थितियां हैं। अब देखें कि कलीसिया की सिद्धता के लिए भी तीन सीढ़ियां हैं, यानी न्यायोचित ठहरना, पवित्र करण और उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इन्हीं से मिलकर नया जन्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति या शारीरिक रीत से जन्म होता है। जब एक स्त्री एक बालक को जन्म देती है तो पहली चीज जो आती है वह जल, फिर लहू और उसके बाद जीवन यानी शिशु आता है। मेरा विचार है कि पहला यूहन्ना 5:7 या 7:5 में पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है, स्वर्ग में गवाही देने वाले तीन हैं, पिता जो कि वचन है जो पुत्र बना, और तीसरा पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही बात पर सम्मत होते हैं। तीन हैं जो जमीन पर गवाही देते हैं, वे हैं जल, लोहू और आत्मा, और ये तीनों एक बात पर सम्मत रहते हैं। अब देखिए कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। आप बिना पुत्र को पाए पिता को नहीं पा सकते और न ही बिना पवित्र आत्मा के पुत्र को पा सकते हैं। मगर बिना पवित्रीकरण हुए भी आप न्यायोचित ठहर सकते हैं। आप बिना पवित्र आत्मा पाए भी पवित्रीकरण की स्थिति में रह सकते हैं। हमने प्रकृति के हिसाब में इसको साबित किया था। अब देखें कि आप में से बहुत से, मैं बहुतों के लिए अजनबी हो सकता हूँ, मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, मगर मैं प्रतीकों के द्वारा शिक्षा देता हूँ, जैसे कि भौतिक स्थिति आत्मिक स्थिति की प्रतीक है। अब हमने देखा कि पूर्णता या सिद्धता का प्रतीक तीन है। खुदा तीन में सिद्ध या पूर्ण होता है। अब देखिए कि इब्राहिम के वंश की सिद्धता इश्माइल, इसहाक और यीशु में जाकर होती है। इश्माइल दासी का पुत्र था, इसहाक स्वतंत्र स्त्री से आया, दोनों ही यौन प्रक्रिया से उत्पन्न हुए, मगर यीशु मसीह बिना किसी यौन क्रिया के एक कुंवारी से उत्पन्न हुआ। यह वह बीज है, एक बीज, अनेक बीज नहीं है, केवल एक बीज है। वे बाकी इब्राहिम के बीज नहीं थे, क्योंकि इब्राहिम का बीज तो विश्वास बीज था जिसके बारे में परमेश्वर कह रहा था। वह उसके शारीरिक पुत्रों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि सारा की मौत के बाद इब्राहिम ने एक और औरत से विवाह किया था और उससे लड़कियों को छोड़ 7 पुत्र और उत्पन्न हुए थे। अतः वे इब्राहिम के वंश या बीज नहीं कहे जाएंगे। इब्राहिम का एक ही बीज था, एक, और वो बीज उसका विश्वास बीज था। वह उस शाही बीज की ओर इशारा कर रहा था जो इब्राहिम के विश्वासानुसार आने वाला था। वह इब्राहिम के शारीरिक जीवन से नहीं वरन आत्मिक जीवन से आने वाला था, जिसने उन सभी बातों को जो परमेश्वर के वचन के विपरीत थी इस प्रकार से ग्रहण किया था मानो वे वैसी न हो, और परमेश्वर पर आशा रहित स्थिति में आशा सहित विश्वास किया। यही वास्तविक बीज है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इस बारे में एक चित्र देखने को मिलता है। बीज की शुरुआत, उस प्रतिज्ञा किए हुए बीज का प्रारंभ कुछ संदेह सहित हुआ, मूल प्रतिज्ञा पर संदेह के साथ हुआ। देखें कि मूल वादे में किस प्रकार संदेह से इसकी शुरुआत हुई। परमेश्वर ने सारा के द्वारा पुत्र देने का वायदा किया था, मगर ध्यान से देखिए कि इब्राहिम का पहला बीज दासी के द्वारा सारा के संदेह से आया कि वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा बूढ़ी हो चुकी थी और संतान पैदा कर पाने की अवस्था को पार कर चुकी थी। इसी तरह से कलीसिया का प्रारंभ होता है, हमेशा वो ऐसे ही शुरू होती है। आप हमेशा तले से कोई काम शुरू करते हैं, चोटी से नहीं। एक आदमी जो सीढ़ी की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करता है वो अपनी गर्दन तोड़वा बैठेगा। आपको नीचे से शुरू करके ऊपर तक पहुंचना है। यहाँ हम पाते हैं कि खुदा की प्रतिज्ञा के प्रकट होने का प्रारंभ परमेश्वर की योजना के प्रति थोड़े संदेह और रुकावट के साथ शुरू हुआ था। इसी रीति से अदन में पाप का प्रारंभ हुआ था। इसी तरह से पाप के द्वारा मौत की शुरुआत हुई, जबकि वहाँ परमेश्वर के केवल एक वचन पर संदेह किया गया या उसमें मिलावट करी गई। परमेश्वर के उस वचन में जो यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है, आप एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते और ना ही उस पर संदेह कर सकते हैं। वचन को वैसा ही होना होता है। और यहाँ सारा ने, जिसे मूल प्रतिज्ञा दी गई, सारा औरत होने के नाते कलीसिया की प्रतीक थी, उसने परमेश्वर की मूल योजना और कार्यक्रम पर संदेह किया जो खुदा के वायदे के किए वचन के बारे में था, और उसने कहा, तू आए इब्राहिम मेरे पति अपने लिए इस सुंदर लौंडी को ले ले और तू उसके संग उसका पति बनकर रहे, और खुदा उसके द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए बीज को देगा और मैं उस बालक को ग्रहण कर लूंगी। देखिए कि केवल तनिक सा एक बिंदु भर परिवर्तन करने से सारा कार्यक्रम ही बदल गया। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे वचन को यहोवा यूं फरमाता है के रूप में ग्रहण करना है। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। तब ऐसा है कि उस प्रतिज्ञा के प्रति जरा से संदेह के साथ बीज की शुरुआत हुई। इसहाक, जो कि स्वतंत्र और वादा की हुई स्त्री का वंश था, जैसा कि पौलुस इस गलतियों की पुस्तक में समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके द्वारा वादा किया हुआ बीज प्राकृतिक रीत से आया। और यहाँ पौलुस आगे कहता है कि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि वे दोनों दो विभिन्न श्रेणियों में से हैं, और ये बात सच है। अविश्वासी विश्वासी के साथ वारिस नहीं हो सकता, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और आज यही परेशानी है, आप एक नामधारी गिरजे के चूजे को उकाबके से विश्वास में नहीं ला सकते, आप बस ऐसा कर ही नहीं सकते। यहीं पर तो सारी परेशानी पैदा हो जाती है। आपको परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर विश्वास करना है। आप दोनों एक संग उत्तराधिकारी नहीं हैं और ना ही आप इसके सदस्य बन सकेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको या तो उकाब होना है या फिर चूजा। ये इश्माइल के साथ वारिस नहीं हो सके, क्योंकि वह दासी की संतान है और वहाँ संदेह उत्पन्न हुआ था। सारा ने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया कि वह उसे पूरा करने में सक्षम है। आप इब्राहिम को देखिए। देखिए कि मैं रविवार प्रात के वचन प्रचार के लिए कैसी भूमिका तैयार कर रहा हूँ। आप इब्राहिम को देखिए कि इब्राहिम ने संदेह नहीं किया था, सारा ने संदेह किया था। एक वही थी जिसने संदेह किया था, वहाँ भी आदम ने नहीं वरन हव्वा ने संदेह किया था। अतः इस बारे में हम और बातें तब देखेंगे जब रविवार प्रात इस पर विचार करेंगे। न ही शारीरिक जन आत्मिक जन के साथ उत्तराधिकारी हो सकता है, ना ही इस्माइल की संतान इजाक की संतान के संग वारिस होगी, और ना ही दुनियावी बुद्धि वाले आत्मिक जन के साथ उत्तराधिकारी बन सकते हैं। कलीसिया जो प्राकृतिक या दुनियावी है और एक कलीसिया आत्मिक है। यहाँ पर इन स्त्रियों की प्रतिछाया में प्राकृतिक कलीसिया है और यहाँ पर एक आत्मिक कलीसिया भी है। अतः ये प्राकृतिक और आत्मिक दोनों कलीसियाएं एक संग वारिस नहीं होंगी। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न समय, दो अलग किस्म के लोग और दो भिन्न वाचाएं हैं। इसलिए दुल्हन का उठाया जाना एक अलग चीज है और वह केवल इब्राहिम की शाही संतान या वंश के लिए है। वह दुनिया शारीरिक कलीसियाई वंश से नहीं हो सकता। उसे इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर के वचन के शाही बीज से आना होगा, और यही वजह है कि दुल्हन का उठाया जाना पहले होगा। याद रखिए कि लिखा है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। ध्यान दीजिए कि फिर से यही कहा गया है कि और जब तक ये हजार वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। अतः ये दोनों प्रकार के लोग आपस में एक साथ वारिस नहीं हैं, ये दोनों एक साथ उठाए जाने में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर निश्चित रूप में एक प्राकृतिक शारीरिक गिरजा है और एक आत्मिक, एक दुनियावी है और दूसरी आत्मिक कलीसिया है। इब्राहिम के पहले से चुने आत्मिक शाही वंश के न्याय का कोई प्रावधान नहीं है, उनका न्याय नहीं होना है, क्योंकि अनंत जीवन के लिए वो पहले से चुने गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए बलिदान को ग्रहण कर लिया है, और वो बलिदान मसीह है जो कि वचन है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप चाहें तो संत यूहन्ना 5:24 में देख सकते हैं, इसलिए जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1 शरीर के अनुसार नहीं वरन वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 5:24 वह जो मेरा वचन सुनता है, यहाँ पर मूल रूप से जो शब्द है उसका अर्थ है कि जो मेरा वचन समझता है, क्योंकि कोई भी शराबी आदि वचन सुन सकता है और परे जा सकता है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, वह ही ये समझ पाता है जिस पर परमेश्वर का बड़ा भेद प्रकट किया गया है कि किस तरह से खुदा मसीह में था और उसके द्वारा उसने दुनिया से मेल किया है, किस तरह से वो और पिता एक हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के गुप्त भेद प्रकट होने की बात पूरी हो रही है और वह स्वयं को जाहिर कर रहा है, किस तरह से वे उन भेदों को मनुष्य काल में मनुष्यों के बीच में खोल रहा है, अपने वचन को जीवन प्रकट करने के लिए उसे मनुष्यों की संगति में लोगों को उसका प्रकाशन दे रहा है, और वो ये सब पूरब से उठते सूरज के समय में कर रहा है और सूर्य अस्त के बाद पश्चिम में यही सब करेगा, ताकि खुद को वो अपनी दुल्हन कलीसिया में जाहिर कर सके, वचन जीवन प्रकट हो सके। आप समझे, यह उनके लिए है जो वचन को समझेंगे, अर्थात जो वचन को जानेगा या जिसे मेरे भेजने वाले का प्रकाशन मिलेगा, और उसी के पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्राकृतिक बीज तो आत्मिक बीज को आगे लाने वाला एक साधन मात्र था, जैसे कि डांट, डाली, खुंदनी और छिलका या भूसी। हम इस बारे में एक दूसरे सुसमाचार में जान चुके हैं, मगर मैं फिर से थोड़ा सा इस बात को लूंगा और इस पर हम थोड़ी देर दोबारा विचार करेंगे। यहाँ पर बीज की ये तीन स्थितियाँ हमें उसके बारे में वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती हैं। पृथ्वी में बीज यानी प्राकृतिक बीज की तीन स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि बीज बोया जाता है तो एक डाली उगकर आती है, उसमें से छोटी छोटी पत्तियां उगकर आती हैं और फिर फुंदनी दिखाई देती है, तब पुष्प पराग उभरता है, फिर छिलका और तब फिर उसमें से बीज बनता है। इस पूर्ण सिद्ध दृष्टांत की तीनों दशाओं को यहाँ देखिए। क्योंकि परमेश्वर सारी प्रकृति का सृष्टि करता है, अतः आप प्रतीक के रूप में इन्हें देखें कि यह कितने सही उतरते हैं। इसीलिए प्रकृति भी उसी प्रकार से गलत नहीं हो सकती जिस प्रकार से परमेश्वर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एक वही तो है जिसने इस सारी प्रकृति की स्थितियों को तय किया है ताकि हम इन्हें देख और समझ सकें। ध्यान दीजिए कि हाजरा डांट या डंठल थी, वह बीज के आने की शुरुआत थी। अब देखिए कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो बीज की तरह दिखाई देता, क्योंकि वो दासी स्त्री थी, अतः उसकी भूमिका डंठल की थी। वह उस प्रतिज्ञा में शामिल नहीं थी, उसे वचन से कुछ लेना नहीं था, वह केवल बीज को लेकर चलने वाला एक साधन मात्र थी। ध्यान दीजिए कि सारा फुंदनी थी जिसमें पराग था, वह यहूदी देश उसी में से उदय हुआ, सारा से ही इजाक पैदा हुआ और इजाक से याकूब, याकूब से 12 पुरखा उत्पन्न हुए और उनके द्वारा एक देश बना। कुंवारी मरियम से विश्वास से सच्चा आत्मिक बीज वचन देहधारी हुआ। आप समझे, तीन स्त्रियों से, तीन प्रकार की स्त्रियों से बीज आगे बढ़ा। उनमें से एक तो वास्तव में बहुविवाह रूपी व्यभिचार के का साधन था, दूसरी एक स्वतंत्र स्त्री से था और तीसरे में यौन प्रक्रिया का कोई हाथ तक न था। विश्वास के द्वारा मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, मगर सारा और हाजिरा दोनों की संतान यौन क्रिया का फल थी, लेकिन मरियम कुंवारी थी और परमेश्वर के वचन की सामर्थ से उसने गर्भ धारण किया। ये ठीक बात है, डांट रूपी हाजिरा दोनों ही स्त्रियों ने उस प्रतिज्ञा पर संदेह किया, मगर देखिए कि दोनों किस प्रकार की संतान उत्पन्न कर पाई। हाजिरा जो इब्राहिम की दूसरे स्तर की पत्नी थी, वह पूर्ण रूप से एक रखेल स्त्री पत्नी थी, मगर उसके द्वारा एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, मगर वो किस तरह का मनुष्य था? पवित्र शास्त्र बताता है कि वह जंगली मनुष्य था, वह अपने तीर कमान के बल पर जीता था और कोई उस पर प्रबल नहीं हो सकता था। वह ऐसा था कि उसे ना तो पालतू या सभ्य बनाया जा सकता था, न ही उसे बदला जा सकता था, न ही उसे नए सिरे से विकसित या जीवित किया जा सकता था। उसे सभ्य नहीं बनाया जा सकता था, वो एक जंगली मनुष्य था। क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के विपरीत विचार का फल था। और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है, चाहे वह कलीसिया, कोई प्रचारक, कोई चर्च सदस्य, कोई भी हो, वह दुनियावी हॉलीवुड के जंगली और व्यभिचारी झुंड को ही पैदा करेगा अगर वह खुदा के वचन के विपरीत है। वह झुंड बिना मिलावट वाले शुद्ध वचन के संग फैर ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो उस प्रतिज्ञा में सम्मिलित ही नहीं है। नहीं श्रीमान, सारा जो सच्चे वायदे के द्वारा ठहराई गई सच्ची पत्नी थी, खुंदनी थी, वह एक भले मनुष्य को लेकर आई, जिसके द्वारा एक वायदा किया हुआ देश बना, जिसने परमेश्वर की सेवा करी। लेकिन मरियम के मामले में यौन कदापि न था, लेकिन उसने वायदा किए हुए वचन पर विश्वास किया, और यह विश्वास उसने तब किया जब वो कुंवारी थी और किसी पुरुष को जानती तक न थी। और प्रभु का दूत उसके पास आया और उसने कहा, नमस्कार मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। और मरियम ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? और स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। किसी भी काल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, मगर मरियम ने खुदा पर यकीन किया, विश्वास, और उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने वचन पर विश्वास किया। किस प्रकार वह पुत्र जनेगी? उसे मालूम था कि हाजरा को इब्राहिम के संग शारीरिक लालसा से पुत्र मिला था, और सारा को भी इब्राहिम के द्वारा यौन क्रिया से पुत्र मिला था, और वह वादा किया हुआ पुत्र था। वहाँ एक दासी एक स्वतंत्र स्त्री थी, मगर यहाँ मरियम को उस विश्वास को थाम कर उसमें योगदान देना था जो सारी असंभव स्थितियों के विपरीत इब्राहिम में था। परमेश्वर ने कहा है तो ऐसे ही हो। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, कभी कोई प्रश्न नहीं किया। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, इस बात की परवाह नहीं कि मुझे दुनिया की कितनी आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और फिर मूल और वास्तविक बीज आया। सारा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें यौनता शामिल थी, यह ठीक बात है। ऐसा सारा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें यौनता सम्मिलित थी, शामिल थी, और न ही गिरजे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनमें सांप्रदायिक संकीर्णता होती है। वायदा किए हुए संतानें पैदा करने के लिए परमेश्वर के वचन में गुहारे विश्वास की जरूरत होती है। जातीय या नामधारी गिरजों की संकीर्णता कभी भी नया जन्म प्राप्त कलीसिया को पैदा नहीं कर सकती। वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके द्वारा तो कुछ विकल्प के रूप में ही बन सकता है जो मूल की नकल करने वाले हो सकते हैं, या कुछ ऐसा होगा जो वास्तविकता दिखने का प्रयास करे। मगर एक दो बार जन्म प्राप्त परमेश्वर की कलीसिया उसके वचन पर विश्वास करती है, जो चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ सामने क्यों न दिखाई पड़े, क्योंकि वह बिना मिलावटी वचन से बनी है। ये चीजें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा मिलती हैं। मरियम जो सच्ची थी और कुंवारी थी, उसने यौनता की प्रक्रिया को ठुकरा कर विश्वास से कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसके द्वारा पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ? वह कोई जंगली मनुष्य नहीं था, उसके द्वारा कोई देश नहीं बना, वरन वचन को उसने पैदा किया। खुदा ने खुद को देहदारी बनाकर जाहिर किया था। आमीन। और वही परमेश्वर का सत्य बीज था जिसने परमेश्वर के प्रत्येक उस वादे को पूरा किया जो पवित्र शास्त्र में दिया गया था। उसके बिना कोई भी जीवन नहीं पा सकता। वही सच्चा बीज थी। वह छिलका या भूसी थी जिसके द्वारा वह बीज लाया गया। अब देखिए कि बाकी दोनों प्राकृतिक बीज को आगे बढ़ाने और जीवन को आगे सरकाने वाली साधन मात्र थीं। अब ये बात याद रखिए कि मैंने उन दोनों के बारे में बताया। अब मरियम को लें, उसने स्वयं को खुदा नहीं बनाया जैसे कि कुछ लोग उसे बनाने की कोशिश करते हैं। वह कोई खुदा नहीं थी। नहीं श्रीमान, वह तो बाकी दोनों की तरह उस बीज को आगे लाने का साधन मात्र थी। लेकिन वचन के प्रति विश्वास अधिक सच्चे स्वरूप को उभार कर सामने लाता है। ठीक वैसे ही जैसे गेहूं या मक्का का दाना जब पकता है तो वह फुंदनी के रूप में जाहिर होता और फिर पराग के रूप में ढलता है। उसके बाद वो छिलके की शक्ल में बदलता है। मगर अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखें तो पाएंगे कि वह ठीक गेहूं के असली दाने की तरह से दिखाई देगा, मगर अगर उसे खोलकर देखा जाए तो असली गेहूं उसके भीतर मिलेगा और वह छिलका केवल उसे आगे लाने का साधन ही नजर आएगा। अतः आप देखिए कि मरियम का मामला यौनता पर नहीं वरन विश्वास पर केंद्रित था। कुछ ऐसा था जो वास्तविक मूल सा दिखाई तो देता था, मगर मरियम स्वयं वो बीज नहीं थी। वह तो उस बीज को लाने का साधन मात्र थी। वह बीज तो मूल विश्वास बीज था, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो विश्वास के द्वारा था जो इब्राहिम को दिया गया था। और केवल विश्वास ही से वह पैदा हो सकता है जो खुदा ने कहा है कि वह करेगा, केवल उसके वचन पर विश्वास के द्वारा। ध्यान दीजिए कि मरियम कितना अधिक वास्तविक बीज सरीखी दिखाई देती है, मगर वह भूसी के समान थी। भूसी उस बीज को अपने अंदर छिपाकर उसकी रक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है, और तब तक उसे संभालती है जब तक कि वह परिपक्व होकर अकेला खड़ा न हो जाए। ऐसा ही इस तीसरे पेंतिकोस्तल काल के गिरजे ने किया है। उसने इस मूल बीज को अपने अंदर रखकर उसे उस समय तक पकाया जब तक कि भूसी को खोलकर दाने को अलग करने का समय नहीं आ गया। मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, वह बस अंडा सेने के यंत्र की तरह से थी। वह लहू जो उसमें था वह मरियम का लहू नहीं था, वह यहूदी लहू नहीं था और न ही वह कोई अन्य जाति का लहू था। वह खुदा का खून था, परमेश्वर का लहू था। परमेश्वर ने उस लहू को बनाया था। वह यौनता का परिणाम नहीं हो सकता। वह यहूदी या अन्य जातियों का नहीं था। एक बालक में एक बूंद भी माँ का लहू नहीं होता है। लहू पिता से आता है। हम पुरुष में पाए जाने वाले होमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, जिस प्रकार से चूजों में होता है। एक मुर्गी अंडा तो दे सकती है, मगर अगर वह मुर्गे से सहवास न करे तो वह बच्चे निकल सकने वाले अंडे नहीं दे सकती। हालांकि वे अंडे एकदम उपजाऊ या बच्चे निकल सकने वाले अंडों के समान दिखाई देते हैं, मगर वे वैसे होते नहीं। उनका सारा हिसाब किताब, सारी प्रकृति उन्हीं अच्छे अंडों की तरह से दिखाई देती है, मगर उनमें जीवन नहीं होता। जो मसीह को अपनाने की घोषणा करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। उनमें से अनेकों मसीही जनों की तरह दिखाई देते हैं। वे मसीही जन की तरह से व्यवहार करते हैं, मगर आपके अंदर मसीह का पाया जाना जरूरी है, जिसका अर्थ है वचन का आप में से जाहिर होना। ऐसा नहीं होता तो फिर आप में वह बीज कभी भी वास्तविक पवित्र शास्त्रीय विश्वासी के रूप में परिपक्व नहीं हो सकता। वह बस कुछ नामधारी धार्मिक गिरजों वाली बात बनकर रह जाती है। वह जीवन जीवन नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवन पाया ही नहीं जाता कि वचन जीवित बन सके, जीवंत बन सके। एक अंडा अगर उसकी प्राप्ति मुर्गे की सहभागिता से नहीं हुई है तो वह चूजे पैदा नहीं कर सकता और घोंसले में धराधरा सड़ जाता है। ये वैसा ही है जैसा नामधारी गिरजों के सदस्य, आप उनका लालन पालन करके उन्हें डीकंस आदि बना सकते हैं, मगर जब तक उनकी सहभागिता नर के संग नहीं, तो यह जाने कि आपने अपने घोंसले में सड़े अंडे भर रखे हैं। ये वाट भूसी या छिलका आगे बढ़ाने और बीज को पालने वाला साधन है। यह ठीक बात है। तब बाद में बीज को स्वयं को उस भूसी से अलग होना होता है, और या भूसी को उस बीज को गेहूं के दाने को छोड़ना होता है ताकि वह सूर्य की उपस्थिति में पक सके। ये सारी बातें हम प्रतीकों के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि अंत समय के ये गिरजे किस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं कि वे स्वयं बीज से दिखाई दें। अंत समय के इन नामधारी पेंतेकोस्तल गिरजों को लीजिए जो आज उठ खड़े हुए हैं। हम थोड़ी देर में इनके बारे में समझाएंगे कि वे किस प्रकार से ठीक असली बीज के समान दिखाई देते हैं। गेहूं के दाने के पौधे में से जब भूसी उभर कर आती है, जबकि दूसरी स्थिति में वो पराग टूटकर बिखर चुका होता है, और तीसरी स्थिति सामने आती है और इसी में वो भूसी या छिलका दिखाई पड़ता है। और अगर आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप ये छोड़कर कभी और कुछ नहीं कह पाएंगे कि उसी में गेहूं का असली दाना है। जब वह छोटा सा दाना उभर कर बाहर आता है तो गेहूं के दाने सा दिखाई देता है, मगर आप वहाँ बैठकर उसको खोलकर देखें तो उसमें गेहूं का दाना नहीं मिलेगा। वह केवल भूसी होती है जो गेहूं के दाने को बाहर लाने का साधन होती है। उसके बाद उसमें से गेहूं का दाना बाहर आता है, मगर याद रखिए कि उस भूसे से उसके बाद कोई और दाना नहीं आता। याद रखिए कि मरियम के बाद किसी भी स्त्री के द्वारा कोई और बीज आने की कोई प्रतिज्ञा नहीं करी गई है, और पेंतेकोस्तल के बाद किसी और नामधारी गिरजे का कोई वायदा नहीं है। वह तो उसमें से बाहर आने वाली वह दुल्हन है जो उठाई जाएगी। वही बीज वचन फिर से जीवन प्रकट होना है। ध्यान दीजिए, देखिए कि वह कितना असली के समान दिखाई देती है। संत मत्ती 24:24 पद में कहा गया है कि अंत के दिनों में दोनों प्रकार की आत्माएं एकदम साथ साथ होंगी, संग संग होंगी। नामधारी गिरजों के लोगों वाली आत्मा और दुल्हन में शामिल लोगों की आत्मा, ये दोनों आत्माएं इतनी अधिक समानता में होंगी कि अगर हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें, यानी दोनों इस कदर एक सी दिखाई देंगी। ध्यान दें कि किस प्रकार से डंठल या डांट से लेकर आगे तक ये सब कुछ निकल कर आया है। अब देखिए कि यहाँ हम इन प्रतीकों के रूप में कुछ बातें देखेंगे। लूथर जो कलीसियाई काल में दुल्हन बीज को लेकर चला, आत्मिक रीत से ऐसा ही था। केवल बीज के एक छोटे से दाने को लेकर लूथर उदय हुआ था। वह था विश्वास के द्वारा न्यायोचित ठहरना। वह हाजिरा रूपी डंठल के नमूने पर था। ध्यान दें कि वेस्ली तारा के नमूने पर था, जो कि फिलाडेल्फिया काल था, यानी प्रेम का काल। यही काल फिंदनी को लेकर उदय हुआ। वेस्ली के समय में इतने अधिक धर्म प्रचारक और सेवक हुए जितने किसी भी काल में नहीं थे। वह जॉन वेस्ली के समय का महान धर्म प्रचारकों का काल था, लेकिन पेंतेकोस्त ने मरियम का प्रतिनिधित्व किया। मरियम इसकी अंतिम स्थिति है। अब देखिए कि वह स्वयं बीज नहीं थी, फिर भी मूल बीज का जीवन उसमें था, मगर अभी तक वह परिपक्व नहीं हुआ था। मैं अब इस समय बहुत वह बीज अब तक परिपक्व नहीं हुआ था, पका नहीं था। वो वहाँ मौजूद था मगर परिपक्व नहीं हुआ था। ऐसा ही हमारे इस पिंतेकोस्तल काल में है जिसमें कि आज हम रह रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का एक ऐसा वचन आगे आना है जो कि नामधारी गिरजों के क्षेत्र से बाहर हो और इनके सिद्धांत। लूथर अपने प्रथम शब्दों सहित भूसी तक पहुँचा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वेस्ली के पास दो शब्द थे, पवित्रीकरण और दूसरा निश्चित तौर पर अनुग्रह का मिलना, और पिंतेकोस्तल के पास तीसरा शब्द था कि वरदानों की पुनः स्थापना। मगर संपूर्ण बीज को ही आना था। देखिए कि किस तरह से उन लोगों ने एक ही शब्द को पकड़कर धार्मिक समुदाय बना लिए। एक शब्द लिया, फिर दूसरा शब्द लिया और नामधारी गिरजे बन गए। मगर ऐसा कुछ जरूर होना था जो संस्थागत धार्मिक समुदाय न बन सके, और वो ये था कि उस मूल बीज का सारा जीवन जो पूर्ण रूप से एक बार फिर से दुल्हन में आना था, और इसके बाद कोई अन्य कलीसियाई काल हो ही नहीं सकता। भाइयों और बहनों, हम अंत समय में हैं। हम यहाँ हैं और उसी अंत काल में आ पहुँचे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। अब हम ये देखते हैं कि ये बातें उतनी ही सच हैं जितना कुछ भी सच हो सकता है। अब भी हम इस बात को ध्यान से देखें कि वह फुंदनी थी या वैसली फुंदनी की तरह से था। पेंतिकोस्तल लोग भूसी की सरीके हैं, जो कि उस आगे आने वाले गेहूं के दाने की दूसरी स्थिति है। मगर भाइयों और बहनों, डंठल मूल दाना नहीं है, न ही फुंदनी दाना है, न ही भूसी दाना है। हालांकि हर स्तर पर जब परिपक्वता आती चली गई, तो वह अधिक से अधिक दाने के समान दिखाई देते चले गए। डंठल दाने जैसा नहीं दिखाई देता। इसके बाद अगली बात क्या हुई? फुंदनी होगी, छोटी सी गांठ दिखाई दी। वह पत्तियों से ज्यादा दाने की तरह से दिखाई दी। उसके बाद क्या आता है? भूसी। वह दाने को अपने अंदर रखकर उसको पालता है। अब पीछे जाकर इब्राहिम से किए गए परमेश्वर के वायदे को देखिए। उसने कहा कि तेरा वंश, यानी खुदा आत्मिक वंश की बात कर रहा था। हम सभी इस बात को जानते हैं। वह मसीह के बारे में कह रहा था, इसहाक के बारे में नहीं। इब्राहिम के विश्वास बीज की बाबत बात थी। ध्यान दें कि पहला पुत्र एक दासी की संतान था। उसमें खुदा की प्रतिज्ञा वाली कोई बात नजर नहीं आई। खुदा किसी भी कारण से अपना वचन वापस नहीं लेता। परमेश्वर ने कहा था कि वो कैसे आएगा और किस तरह से आएगा, किस रीत से आएगा। मगर सारा तो गिरजे की तरह थी, गिरजे सरी की थी, गिरजे की प्रतिछाया थी। और उसने विचार किया और कहा, मैं सोचती हूँ कि ये बात तो कुछ अधिक ही अजूबा बन जाएगी। मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर सकती। अतः तुम जाकर हाजरा को अपने लिए ले लो, तुम उसे पत्नी बना लो। देखा आपने, उस डंठल ने प्रतिज्ञा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर जब सारा के संतान पैदा हुई, देखिए कि वो सब बड़ा अच्छा दिखाई दिया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अधिक ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वादा पूरा हो गया है। मगर तब भी वह मूल वास्तविक प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं थी, क्योंकि इसहाक में समाये इसराइल ने जब वह वास्तविक मूल बीज आया तो उसे अस्वीकार कर दिया। हालेलुया। आप उत्तेजित ना हो, दौड़ना लगा है, आपके मन को कोई चोट नहीं पहुँचेगी। उन लोगों ने मूल बीज को अस्वीकार किया, उसे घात किया और सलीब पर चढ़ा दिया, एक वैसे ही जैसे पौलुस ने यहाँ कहा है। क्या दासी की संतान स्वतंत्र स्त्री की संतान को सताती नहीं रही है? इसी तरह से नामधारी गिरजों की संतान वास्तविक दानों को सताती है। सर्वदा ऐसा ही होता है। वे एक संघ उत्तराधिकारी नहीं होंगे, वे एक साथ गठबंधन में बांधे नहीं जाएंगे। वे पूर्ण रूप से दो विभिन्न प्रतिज्ञाओं के वंश हैं, भिन्न समय और काल के हैं, तथा पूरी तरह से दो अलग प्रकार के लोग हैं। एक दुल्हन है और दूसरा नामधारी गिरजा। उनमें आपस में कोई तुलना नहीं करी जा सकती, जरा भी नहीं। मगर तब भी वह बीज नहीं थे जिसके आने का वायदा किया गया था। ना तो सारा और ना ही हाजिरा वह बीज थी, और ना ही सारा और ना ही मरियम वह मूल बीज। मरियम वो बीज नहीं थी, वह तो बीज को आगे लाने वाला साधन, मगर उसने अपने गर्भ में उस बीज को पाला और उत्पन्न किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूसी अपने गर्भ में वास्तविक बीज को लेकर आती है। मगर भूसी स्वयं बीज नहीं है, वह बीज की तरह केवल दिखाई देती है। वह बीज के चारों ओर उसे घेरे में लिए रहती है। पीछे डंठल की हालत में बीज का जीवन विकृत रूप में होता है, और जब वह पराग की हालत में आता है तो एकत्रित होना शुरू होता है। मगर जब वह भूसी या छिलके की हालत में आता है तो वह अपने स्वरूप में बीज के समान दिखाई देता है। यीशु ने हमें बताया था कि आखिर के दिनों में क्या होगा। दोनों इतना अधिक समानता में होंगे कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मगर तब उसमें से बीज निकलकर बाहर आता है और वह जीवन भूसी से अलग हो जाता है। भूसी परिवाहक है, साधन है, और ठीक इसी प्रकार से ये नामधारी धार्मिक गिरजे हमारे साधन या परिवाहक रहे हैं। लूथर, फिर वेस्ली, फिर पेंतेकोस्तल, सब यही थे, और अब बीज के आने का समय आ गया है। ध्यान दीजिए, देखिए कि वह स्वयं बीज नहीं थी, मरियम वह बीज नहीं थी, वह डंटल, खुंदनी, गांठ और छिलका वचन के भागों को आगे चलाकर लाने वाले साधन थे। ये संपूर्ण वचन नहीं थे। लूथर के पास न्यायोचित ठहरने और वैसली के पास पवित्रीकरण का वचन था। पेंतेकोस्तल के पास वरदानों की पुनः स्थापना का वचन था। मगर जब वचन आया, अब देखें कि वे वचन को सामने रखकर कह पाए कि न्यायोचित ठहरने के द्वारा मनुष्य उद्धार पाएगा। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? यकीनन। वह वचन का उसी तरह से परिवाहक या उसे आगे बढ़ाने का माध्यम था जिस तरह की डंठल गेहूं का ही एक भाग होता है। मैं यही मानता हूं। निश्चित रूप से वह उसी का भाग है, मगर वह परिवाहक है, साधन है, और उसमें स्वयं जीवन नहीं। तब उसके बाद पवित्रीकरण आया। कितने लोग पवित्रीकरण पर विश्वास करते हैं? आप पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं और आपको निश्चित रूप से इस पर विश्वास करना ही है। अतः तब भी वह पूर्ण वचन नहीं था। पहले से कुछ बढ़ोतरी हुई थी, दो शब्द जुड़ गए थे। मगर उसके बाद पेंतेकोस्तल काल आया, जो कि वरदानों की पुनः स्थापना का समय था। उन्होंने अन्य भाषाएं बोली और अन्य भाषा बोलने वाले को पवित्र आत्मा पाने का पहला प्रमाण समझ लिया। तब जिसे उन्होंने पहला सबूत गिना, उसी में से बाहर क्या निकल कर आया? मगर वो एक नामधारी समुदाय में ढल गए। मगर जब आप उस कथन पर पहुंचते हैं जहां कहा गया है कि मैं और मेरा पिता एक है और अन्य बातें कहते हैं, तब भूसी दाने को छोड़कर अलग। मगर सच्ची मूल दुल्हन वाली कलीसिया, वो अपने बीच में परमेश्वर के संपूर्ण वचन को उसकी परिपूर्णता के साथ प्रकट करेगी, क्योंकि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ध्यान दीजिए कि मरियम के गर्भ में बीज था, मगर जब बीज उत्पन्न हो गया तो उसने कहा, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं और मेरा पिता एक है, यदि मैं उसके काम नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो। वहाँ वह बीज था। तुम में से कौन मुझ पर पापी होने का दोष लगा सकता है? यीशु ने पूछा। पवित्र शास्त्र में जो कुछ करने का वायदा किया गया था वो मैंने कर दिया है। उसने कहा कि परमेश्वर ने उन सब बातों की पुष्टि मेरे द्वारा कर दी है। अब कौन मेरे लिए ये कह सकता है कि मैं मरियम का बीज हूँ? जो की भूसी है, वह उस बीज की तरह से तो दिखाई देती थी मगर थी नहीं। बीज तो तब तक उसके गर्भ में ही था। ध्यान दीजिए कि पेंतेकोस्तल काल में लूथरन व वैसली काल के द्वारा यही सब हुआ। इस पेंतेकोस्तल काल में वही बात वैसे ही घटित हुई है। मगर अब ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 सातवीं मोहर खोलने के समय में संपूर्ण वचन को फिर से जीवंत प्रकट होना है और उसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूरी सामर्थ के साथ जीवंत बनना था, वैसे ही जैसे वो तब था जब वो धरती पर था। उसी रूप में, उसी तरह से वही सब चीजें करनी थी जो उसने धरती पर तब करी थी। आमीन। इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। संत लूका 17:30 में यीशु ने कहा है कि अंत के समय में वैसा ही होगा जैसा सदोम के समय में था। जब मनुष्य का पुत्र फिर से प्रकट होगा तो फिर वैसा ही होगा। दुनिया आज सदोम की दशा में है और गिरजे लूत और उसकी पत्नी की भांति सदोम में चले गए हैं। और मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं आज दुनिया में एक चुनी हुई कलीसिया है जो इस सदोम की दशा से बाहर रखी गई है और उसकी बातों से अछूती और अलग स्थिर है। और परमेश्वर के प्रकट होने ने उस कलीसिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम अंत के दिनों में हैं। भूसी ने अपनी शक्ति और बल को आगे बढ़ाकर दाने को सौंप दिया है और दाना भूसी को छोड़कर बाहर आ गया है। वह भूसी बड़ी भली थी मगर उसका समय बीत गया। देखिए कि ये वचन से बनी दुल्हन है। इब्राहिम के शारीरिक बीज, इसहाक व याकूब तथा इस्माइल आदि के शारीरिक बीज को अंत में धरती के भीतर जाना पड़ा ताकि वह इस दूसरे बीज यीशु को लेकर आ सकें, और इसी प्रकार से बाकी सभी को करना पड़ा। बीजों को मरना पड़ा, मेरा मतलब है कि छिलकों को मरना पड़ा, पराग और सभी को सूख जाना पड़ा ताकि दाना खुद को बाहर ला सके। प्रत्येक काल में ऐसा ही हुआ है। नामधारी गिरजे वचन के भागों को आगे लाने वाले माध्यम बने। वचन के बाकी भाग को उन प्रबुद्ध धर्म सुधारकों से छिपा कर रखा गया या उनके लिए उसे मोहर देकर बंद रखा गया जब तक कि उकाब का काल न आ जाए। पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि मलाकी 4 के अध्याय में ऐसा ही बताया गया है। हमसे यही वायदा किया गया है। ये एकदम ठीक बात है। प्रभु ने ये बातें बुद्धिमान और समझदारों से छिपा कर रखी हैं, और जैसा कि हमने अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर देखा, हमने पाया कि वे तीनों सुसमाचार दूत अथवा वे तीनों प्राणी जो आगे आए, उनमें से प्रत्येक लूथर के समय में उसके अनुरूप थे। प्रत्येक प्राणी ने दूसरे प्राणी को ठीक और उसी के काल के अनुरूप स्थापित किया। वे सारे प्राणी, बैल तथा अन्य जिनके बारे में पवित्र शास्त्र बताता है, ठीक अपने समय के अनुरूप थे, अनुसार थे। वे न्यायोचित ठहरना पवित्रीकरण से लेकर पिंतेकोस्तल तक चले आए, मगर चौथा प्राणी उकाब था। और ये सच है कि उसी काल से परमेश्वर ने इस कलीसिया को ऊपर उठाना शुरू किया है, अतः उसे उसी काल से होकर अपने में सुधार लाते हुए यहाँ तक आना था। जी हाँ श्रीमान, मलाकी चार अध्याय का वायदा जो उकाब वाला प्राणी दे रहा है उसे पूरा होना है। यीशु मरियम का नहीं था, वह मरियम के द्वारा उसी प्रकार से आया जिस प्रकार भूसी के द्वारा जीवन लाया गया। अब आज रात बहुत से कैथोलिक भाई बहन जो यहाँ हैं, वे शायद यही सोचते रहे हैं कि मरियम परमेश्वर की माता थी, जैसा कि आप लोग मानते हैं। वह किस तरह से खुदा की माँ हो सकती है? परमेश्वर का ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत, आप समझे। अगर मरियम प्रभु की माँ थी तो फिर उसका बाप कौन था, क्या समझे आप? परमेश्वर मरियम को रचने बनाने वाला था, वह परमेश्वर की रचिता नहीं थी। खुदा ने स्वयं की रचना मरियम के गर्भ में करी थी, वह मरियम ने रचना नहीं करी थी, खुदा ने स्वयं अपनी रचना करी थी। वह मरियम के द्वारा नहीं बनाया गया था, वरन मरियम उसके द्वारा बनाई गई थी। यह ठीक बात है। पवित्र शास्त्र बताता है कि सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके द्वारा बनाया न गया हो। अतः जबकि वो स्वयं परमेश्वर है तो फिर उसकी कोई माँ कैसे हो सकती है? अब यहाँ हम उन सत्य नमूनों का सत्य प्रकाशन देख सकते हैं। यहाँ पर उस शारीरिक बीज को आगे लेकर चलने वाली ये तीन स्त्रियाँ हैं जो उसे लेकर यीशु के परिपक्व बीज स्तर तक लेकर आईं। इश्माइल इस कारण वह मूल बीज नहीं था क्योंकि वह हमारी आज की भाषा में विवाह बंधन का फल नहीं था, वो एक दासी का पुत्र था। उसके बाद थोड़ी सी और यीशु की समानता में इजहाक पैदा हुआ, मगर वह भी मूल बीज नहीं था क्योंकि वह सारा और इब्राहिम की यौन प्रक्रिया से पैदा हुआ था। मगर उसके बाद मरियम आई और कुंवारे जन्म के द्वारा यीशु मसीह को पैदा किया। ये सच है, परमेश्वर जो वचन है वही देहधारी हो गया था। अब ध्यान दें कि वहाँ तीन स्त्रियाँ थीं। वे यहाँ तीन गिरजों की प्रतीक हैं। औरत कलीसिया या गिरजे को जाहिर करती है। इसका मतलब है कि तीन नामधारी काल जो वचन को आगे लाने का साधन थे, जिन्हें की बाद में भूसी की तरह से और अन्यों की भांति सूखना ही था ताकि बीज के लिए जगह बन सके। बीज तब तक पक नहीं पाता जब तक कि डंठल, खुंदनों व भूसी, पत्ती सभी सूख न जाएं। ये सच बात है भाई। दाना उनमें के समस्त जीवन को अपने अंदर सोख लेता है। आमीन। उनमें जो कुछ भी जीवन था वह तथा दाने की परिपक्वता जुड़कर अंतिम रूप से दाना बनता है। पीछे की स्थितियां मूल बीज नहीं बन सकती थीं। अब ये समय बीज का या दुल्हन काल है। भूसी मृत हो चुकी है, सूख चुकी है, मर चुकी है। ये कुंवारे वचन का वक्त है। याद रखिए कि ये बिना मिलावटी अछूते वचन का समय है। अगर आप इसे नामधारी समुदाय के हाथों में छोड़ दें तो निश्चित रूप से यह कुंवारा वचन नहीं रह पाएगा। आप देखेंगे कि तुरंत मनुष्य उसमें खींचतान शुरू कर देगा। मगर परमेश्वर की कलीसिया नामधारी गिरजों से अछूती रहेगी। हालेलुया। एक कुंवारी से जन्मा ये खुदा का वचन जीवन प्रकट किया गया। यीशु मसीह है जो अब, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। ये सब कितना अद्भुत है। मैं इसे प्यार करता हूँ। मुझे इस बात पर विश्वास है। मैं जानता हूँ कि यही सत्य है। कुंवारी दुल्हन के जन्म में नामधारी धार्मिक गिरजों की मनुष्य वाली खींचतान नहीं होगी, और वचन से बनी ये दुल्हन को वह बातें छू भी नहीं पाएंगी। नहीं श्रीमान, दुल्हन को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वह उनमें से बाहर निकल आए। उनकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध मत बनो। यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। उस दिन मैं फीनिक्स में एक प्रार्थना सभा करके ड्यूसैन को वापस आ रहा था, और जब मैं और पत्नी बातें करते जा रहे थे तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ दिखाने के लिए मेरा ध्यान खींचा। बहुत देरी हो जाने के कारण बच्चे कार की पिछली तरफ सो रहे थे। उसने मेरा ध्यान बाज पक्षी की ओर दिलाया। मैंने थोड़ी देर तक उस बाज को देखा और उसका अध्ययन किया। वह आज के गिरजों का सटीक नमूना है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाज पक्षी आज अपनी मूल रचना स्रोत की पहचान खो चुका है। यह बात पूरी तरह से ठीक है। एक वक्त था जब वो अपने बड़े भाई उकाब से मिलता जुलता था, मगर आज वो आकाश की ऊंचाइयों में अपना स्वर्गीय मन्ना नहीं खोजता और नहीं उड़ता। अब वो ढीला पड़ चुका है। अब वो आसमान में नहीं उड़ता और जमीन पर ही गिद्धों की तरह खुदकता रहता है। वो टेलीफोन के खम्भों पर बैठा रहता है, मरे हुए खरगोशों की टोहों में रहता है। बाज को ऐसा करने के लिए नहीं बनाया गया था। नहीं, उसे एक उकाब की समानता में बनाया गया था। अब ये नामधारी गिरजों की तरह से है जो उकाब की तरह से बनाए गए हैं। उसे चाहिए तो था कि वह आकाश में ऊंचाइयों पर रहता, मगर उसके बजाय वो ढीला पड़ गया। अब वह उस नीली असीमित अनजानी ऊंचाइयों में नहीं उड़ता। नहीं श्रीमान, आज वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए धार्मिक नामधारी समुदायों की धर्म शिक्षा व ज्ञान के आधुनिक ढंग को अपनाकर उसी पर निर्भर रहता है। आज वे दूसरों के पास जो है उन्हीं मृत और सड़े गले खरगोशों को तलाशता रहता है। ये सच बात है। वह जमीन पर एक पांव से कूदता रहता है। ये ठीक है, ठीक बात है। एक बास को देखिए कि उसे देखकर क्या पता चलता है, मगर एक उकाब जरा भी नहीं बदला है, वह उकाब ही बना रहता है। अब एक बास अपना स्वर्गीय मन्ना पाने के लिए बहुत ऊपर आकाश में नहीं उड़ता, वरन वह उसी पर निर्भर रहता है जो मरा हुआ भोजन उसे मिल सकता है। एक बाज अब नहीं उड़ता, वह किसी खम्भे आदि से नीचे धरती तक आता है। एक पुराने बाज को आप आज देखिए, आप सड़क पर जाकर देखिए, वहाँ टेलीफोन के तार बाज पक्षियों से भरे मिलेंगे। वह खम्भे पर बैठा धरती पर यही खोजता है कि उसे कुछ सड़ा गला भोजन मिल जाए। वह ऐसा हो गया है, इसी वजह से अब उसके पंख भी वैसे नहीं रहे कि वह उड़ सके। पहली बात यही होगी कि वह पूरी तरह से धरती पर ही रहा करेगा, क्योंकि वह कमजोर और ढीला पड़ गया है। परमेश्वर ने जो बल और सामर्थ्य उसे दी थी, अब वह उसका प्रयोग नहीं करता। उसकी मुख्य पहचान यही थी कि वह आकाश में विचरण करे और वहाँ से धरती पर नीचे देखे, मगर आज वो धरती पर बस गया है और ऊपर देख तक नहीं सकता। उसके दिमाग में तो बस मरे हुए खरगोश, मांसाहारी बिल्ली आदि भरे होते हैं जो सड़क पर कुचल कर दुर्घटना में मरे पड़े रहते हैं। उन्हीं को वो ढूंढता रहता है। वह उकाब नहीं है, मगर कुछ उकाब जैसा दिखाई देता है। ठीक नामधारी गिरजों की तरह जो शिक्षा केंद्र आदि द्वारा आत्मिक भोजन पर मुनस्सर होते हैं, वह जो मरा हुआ भोजन है जो बहुत वर्ष पहले लूथर वेस्ली पेंटेकोस्टल आदि के द्वारा आकर अब बासी बन चुका है, वह आज पीछे की ओर दृष्टि किए किसी मनुष्य के द्वारा बनाए सिद्धांत और मत को खोज रहा है, बजाय इसके कि वह वचन की आकाश की ऊंचाइयों में उड़े जहाँ पर विश्वास करने वालों के लिए सभी कुछ संभव होता है। उसे भिन भिनाने वाली मक्खियों की आदत पड़ चुकी है। वह गंदी चीजें तो गिद्धों या दुनिया के लोगों के लिए है। यह धार्मिक शिक्षा केंद्र और ज्ञान तो दुनिया के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं। वह आज बहुत कोमल और ढीला बन चुका है और उसमें बल नहीं रहा कि वह आकाश की कठिन उड़ाने भर सके जहाँ विश्वास करने वालों के लिए तभी कुछ संभव होता है। वह बैठा बैठा पीछे से बस यही कहता रहता है कि डॉक्टर दिव्य पादरी साहब ने ऐसा कहा है वैसा कहा है। मेरा नामधारी गिरजा इस बात पर इस तरह से विश्वास नहीं करता। दूषित बास, तू परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने और उसे मानने से डरता है। आप कहते हैं कि भाई आश्चर्य कर्म करने के दिन बीत गए, आप ढीले पड़ गए हैं, आप अपने पंख लेकर आकाश में उड़ान भरने से डरते हैं और एक प्रार्थना सभा के नाम से आपका हृदय घबराने लगता है। क्या आप ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि वेदी के पास 10 मिनट ठहरने में आपको डर लगता है? एक गिद्ध की तरह धरती पर कूदना, फुदकना और मृत भोजन रूपी काम चलाऊ बातें आपको भाती है? यहाँ श्रीमान, वह इतना लचीला बन चुका है कि विस्तृत क्षेत्र का कठिन विचरण अब और कर ही नहीं सकता। वह बस गिद्ध की तरह उछल सकता है और गिद्ध का सा भोजन कर सकता है। ठीक ऐसा ही तो है, ये ठीक बात है। और आखिर में एक गिद्ध ही के रूप में वो नजर आएगा। वह गिद्ध की तरह से व्यवहार कर रहा है। वह अब जरा भी बाज नहीं रहा है, जरा भी नहीं। एक बाज से अधिक अब वो गिद्ध दिखाई पड़ता है। एक बाज से उम्मीद करी जाती है कि वह आकाश में उड़ेगा, ये नहीं कि वह टेलीफोन के खम्भों पर बैठकर मरे खरगोशों को खोजेगा और फिर धरती पर उतरकर सड़क के किनारे उछल कूद मचाएगा और गिद्ध की तरह से व्यवहार करेगा। आप समझे, आज गिरजे भी बस इसी तरह की हालत में है। कहते हैं कि मेरे ऊपर उड़कर जाने का क्या लाभ है जब मुझे यहाँ ही खरगोश मिल जाते हैं, मगर आज ये भोजन मृत है, सड़क गल गया है और दूषित हो गया है। एक समय था कि वो अच्छे थे, इसी तरह से लूथर वेस्ली और पेंटेकोस्टल के सिद्धांत उस समय के लिए ठीक थे। आप आज एक गिद्ध की तरह बासी भोजन क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर जब इजरायली लोग यात्रा में थे तो आकाश से प्रत्येक रात ताजा मन्ना मिलता था, उसमें से अगर कुछ बचा कर रखा जाता था तो वह सड़ जाया करता था। हम इसको अपने यहाँ यूँ कहकर पुकारते हैं कि उसमें कीड़े पड़ गए हैं। आज हमारे सामने इस तरह की कई सड़ांध हैं। आज हमारा धर्म बस ऐसी बातों पर निर्भर करता है कि किसी ने ऐसा कहा है, किसी का ये कहना है, और ये प्रतिज्ञा तो किसी दूसरे समय के लिए है। बहुत दिन नहीं हुए कि एक बैप्टिस्ट प्रचारक उस दिन मेरे घर आया और उसने कहा, आप देखिए कि मैं एक बात के बारे में आपकी धारणा सही करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आप इस काल में प्रेरितों वाला सिद्धांत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेरिताई काल तो बीत चुका है। मैंने पूछा, वो कब बीता? मैं आपको बताऊंगा कि वह कब शुरू हुआ था और अब आप बताइए कि वो कब समाप्त हुआ। میں نے پوچھا کیا آپ وچن پر وشواس کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ پنتیکوست کے دن سے پریرت کال شروع ہوا, کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یقین کرتا ہوں. میں نے کہا تب پریرت پترس نے یوں کہا تھا, اور یاد رکھیے کہ یشو نے کہا تھا کہ جو کوئی اس وچن میں سے کچھ ہٹائے یا بڑھائے اس کا بھاگ جیون کی پستک میں سے ہٹا دیا جائے گا, یعنی چاہے وہ پرچارک ہو یا انیہ کوئی بھی ہو. اور میں نے کہا پترس نے کہا ہے کہ تم میں سے پرتیک جن پشچاتاپ کرے اور پاپوں کی کھما کے لیے یشو مسیح کے نام میں بپتسما لے تو تم پوتر آتما میں دان میں پاؤ گے, اور یہ پرتیجا تم اور تمہاری سنتانوں وغیرہ ان سب دور دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے جنہیں ہمارا پربھو پرمیشور اپنے پاس بلائے گا. ایسا ہے تو پریرتائی کال کب ختم ہوا؟ یہ تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے, یہ تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یہ ان بازوں کے جھنڈ کا کہنا ہے کہ وہ سمے بیت چکا جو مچھلیوں کی طرح سے بھن بناتے ہیں اور کسی مرت شو پر اچھلتے کودتے رہتے ہیں. وہ شکار وہ بھوجن تو کسی انیہ کال میں انیہ کال نے ان کے لیے مارا تھا, اور وہ آکاش سے گرا تازہ منا نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, وہ اس مننے کو نہیں چاہتے, وہ پرارتھنا سبھا کو سہن نہیں کر سکتے. وہ پیدائش سے ہی عقاب نہیں ہے, کومل ہیں, سخت نہیں ہیں, بس کھدکنے والے باز ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے آدھونک نامدھاری گرجے ہیں جو اسکولی دھارمک شکشا پر منحصر رہتے ہیں, نربھر رہتے ہیں, جس شکشا کا آدھار منش کی بنائی دھارمک پدھتی ہے جو ان ساری ستے باتوں کو جھٹلا سکے. لوگ ان کی باتیں سویکار کر لیتے ہیں, وہ اس وچن کو گرہن نہیں کرتے جو یہ کہتا ہے کہ یشو مسیح کل آج اور یوگان یوگ ایک سا ہے. وہ ملاکی کے چار ادھیائے کو نہیں مانتے, اور وہ باقی کے ان سارے وعدوں کو بھی نہیں مانتے جو آج کے دنوں کے لیے ہیں. وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ کس طرح سے نبی نے کہا ہے کہ سانجھ کے سمے اجیارا ہوگا. وہ لوگ ان باتوں کو نہیں لیتے, ورنہ وہ اس باسی بھوجن پر نربھر رہنا چاہتے ہیں جو شکار پینتیکوستل لوگوں نے 100 ورش پہلے کیا تھا. وہ آدھے سڑے مننے کو کھا رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ وہ اچھا بھوجن نہیں ہے. دھیان دیجئے کہ گرجے آج دنیا میں بن کر مردہ بھوجن کرنے والی لیگ پر چل رہے ہیں. وہ گردوں کی طرح سے مرت چیزوں پر نربھر ہیں. گرجوں میں راجنیتی بھری ہے. وہ پوتر آتما کو افسر نہیں دیتے کہ وہ کسی منش کو گرجے میں سیوکائی کے لیے بھیجے, ورنہ وہ راجنیتی کر کے ایک منش کو سوئم چنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نامدھاری گرجے اسے گرہن کرتے ہیں یا نہیں. یہ ٹھیک بات ہے, وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں, دنیا کی طرح سے ان کی ویش بھوشا ہے, دنیا کی طرح وہ دکھائی دیتے ہیں, دنیا کی طرح سے ویوہار کرتے ہیں, وہ دنیا کی طرح سے گدھ بن چکے ہیں. وہ سست ہیرے اور سمجھوتے کرنے والے ہیں. بس ان کا معاملہ ایسا ہی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی عقاب کو سمجھوتا کرتے دیکھا ہے؟ نہیں شریمان, اس میں کوئی سمجھوتا کرنے والی عادت اور پرویتی نہیں ہوتی, اور نہ ہی سچا واسطوک مسیحی ایسا کرتا ہے. وہ ڈھیلا نہیں ہوتا, وہ تو جب تک ستیہ کو پا نہیں لیتا اس کی تلاش میں لگا رہتا ہے. آمین. ہاں شریمان, اسے تازہ مننا چاہیے اور اس کو تازہ بھوجن ملے گا. وہ وہاں نیچے اتر کر جب تک کھودتا رہے گا, ڈھونڈتا رہے گا جب تک وہ اسے مل نہ جائے. وہ اونچا اور اونچا اڑے گا. اگر اسے اس گھاٹی میں بھوجن نہیں ملتا تو وہ دوسری گھاٹی میں جائے گا. جتنا اوپر آپ اٹھیں گے اتنی ہی ادھک آپ دیکھ سکیں گے. آتے یہ سمے عقابوں کا ہے کہ وہ آج کے دنوں میں پرمیشور کی دی ہوئی پرتیگیاؤں کو ڈھونڈے اور ادھک سے ادھک اونچائی پر اڑے. یہ نہیں کہ گدھوں کے اس بھوجن پر جیئے جس کو ورشوں پور مارا گیا تھا, اس میں سے باہر آ جاؤ. آج گرجوں میں راجنیتی ہے, متدان ہے, اسے باہر کیا, اسے چنا. یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں, اور آج پوتر آتما کو ذرا بھی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ گرجوں کو کچھ کر سکے. اور اب پرارتھنا سبائیں نہیں رہی, پربھو کے ساتھ دکھ اٹھانے اور اس کے وچن کو پورا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب یہ وشواس ہی باقی نہیں کہ وچن کل آج اور یوگان یوگ ایک سا ہے. وہ بس اپنے نامدھاری سمودائے بناتے, انہیں اشدھ پکشیوں کی پرورتی میں ڈھالتے, اپنے نام سدستہ رجسٹر میں لکھتے ہیں, اور وہ ڈھیلے اور سست بن گئے ہیں. وہ وہاں بیٹھے کسی بھی طرح کے سڑے گلے بھوجن کو لالسا پورن نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد بھی امید کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم باز کی طرح سے دکھائی پڑے جو عقاب کا بھائی سری کا ہوتا ہے, یعنی عقاب والے نبی کا بھائی جو سچے وچن کو لے کر آیا اور اسے جیونت پرکٹ کیا. وہ منشیوں کی بنائی آدھی سڑی دھارمک شکشاؤں پر پرسن چت ہیں. کہاں سے اس کو یہ سدھانت ملے ہیں؟ کسی منشیہ کے بنائے سنڈے اسکول کاریکرم سے ملے ہیں. کسی دھارمک شکشا دینے والے نے کسی دھارمک شکشن سنستھا میں پہلے کبھی یہ شکار مارا تھا. اسے بتایا گیا کہ آشچاریہ کرم کرنے کے دن بیت گئے ہیں. پوتر آتما کے بپتس میں جیسی کوئی بات نہیں ہوتی, یہ سب موکتا ہے. مجھ سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقاب اس پرکار کا بھوجن کھائے گا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا. نہیں شریمان, نہ ہی کوئی مسیحی مرت سڑے گلے نامدھاری گرجوں کے سدھانت و انیہ باتوں روپی بھوجن کو کھائے گا. وہ تو خدا کے وچن کے تازے وعدوں کو جو اس سمے کے لیے ہیں انہیں ہی چاہتے ہیں. پرمیشور نے لوتھر کے دنوں میں خرگوشوں سری کے بھوجن کا وعدہ کیا تھا. دوسروں کے سمے میں اس نے دوسری چیزوں کی پرتیجا کری تھی, مگر اب اس نے ہم سے پورے ساتوں بھوجیہ پدارتھوں سے بھرے سمپورن بھوجن کا وعدہ کیا ہے. क्योंकि सभी सातों मोहरें खोली जा चुकी हैं और उनके लिए जो ग्रहण कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के विषय में सभी कुछ तैयार है। अरे कैसी बात है कि बाज मक्खियों की तरह भिन बना रहे हैं। सोचिए कि कितना भयंकर समय है। जैसे बाज ने बहुत समय पहले से ही अपनी पहचान एक बाज के रूप में खोदी है, उसी प्रकार गिरजे ने काफी समय से अपनी पहचान परमेश्वर के नबियों उकाब के छोटे भाई के रूप में खोदी है। एक समय था कि वो सच्चे न्यायोचित ठहरने के वचन को आगे लाने वाला साधन था, तब वे पवित्रीकरण को लाने वाला परिवाहक बना, फिर वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लाने का परिवाहक बना और पवित्र आत्मा के दान फिर से उपलब्ध हुए, मगर उसके बाद वह फिर से पीछे आकर उसी मन्ने को खाने लगा जो किसी और समय के लिए था और अब सड़ गया था। वह भोजन अब अच्छा नहीं है। एक वास्तविक आज का उकाब इस बात को जानता है कि वह मन्ना उस समय के लिए ठीक था और वह उसे आज के मन्ने के साथ जोड़ कर रखता है। वह ऐसा ही करेगा जब तक यीशु मसीह आज के समय के लिए दिए गए वायदे के अनुसार स्वयं को अपनी सामर्थ्य सहित पूर्ण रूप से प्रकट न कर दे। अब वो सूखी हुई भूसी है, वह बीत चुकी है। परमेश्वर का आत्मा उनमें से होकर कार्य कर चुका है, यह सत्य बात है। और वो भूसी इस जीवंत प्रकट हुए वचन बीज के संग उत्तराधिकारी नहीं होगी, यकीनन वह नहीं होगी। वह यकीनन दुल्हन के उठाए जाने में शामिल नहीं होगी। वह गिरजों की सदस्य हो सकती है और हो सकता है कि दूसरे पुनरुत्थान में उसका न्याय इसके आधार पर किया जाए कि उसने क्या वचन सुना था। अगर आज रात आप यहाँ होकर भी बस गिरजे के सदस्य मात्र ही बन पाए तो आपके साथ न्याय में क्या होगा, जब हम सभी को वहाँ खड़े होकर गवाही देनी होगी कि आपने सत्य वचन सुना था। समझे? अब नामधारी गिरजों की कलीसिया अनंत नीले आकाश में विचरण नहीं करती, उन ऊंचाइयों में नहीं उड़ती जहाँ खुदा के अनंत वचन की अलौकिक सामर्थ्य उसकी प्रतिज्ञाओं को उन लोगों के लिए पूरा करती है जो उन पर विश्वास करते हैं। किंतु वह इन सब बातों पर यकीन नहीं करेगी। वह तुरंत जवाब में कह उठेगी कि मेरा नामधारी गिरजा कहता है कि यह खरगोशों वाला भोजन ठीक है, हालांकि उसमें कीड़े पड़ गए हैं, मगर वो ठीक है। आपने देखा, वह उसी पर निर्भर रहती है। पेंतेकोस्तल उनकी गंदे पक्षी सरीखी नामधारी गिरजों वाली बहन है जो अब अधार्मिक सभा में बड़े आसनों पर बैठी है। यकीनन ऐसा ही है। वह उनके राजनीतिज्ञों की बातें सुनती है, मानती है और उन्हें 50 वर्ष पुराने मृत खरगोशों के भोजन को देती है जो अशुद्ध पक्षी खाया करते हैं। पेंतेकोस्तल गिरजों की यही दशा है। ओह प्रभु, ठीक वैसा ही है जिस प्रकार सारा ने अलौकिक वायदे को पूरा करने के लिए हाजरा को पकड़ा और वायदे को पूरा करने की चेष्टा करी थी। इसी तरह की बेदारी गिरजे लाने की कोशिश में है। हमारे आज के बड़े बड़े प्रचारक देश भर में यही कहते हैं, हमारे समय में बेदारी आई है, हमारे समय में बेदारी आई है। आप सभी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतेकोस्तल जमा होकर पुराने मृत गिद्धों वाले भोजन से ताजा मन्ने की बेदारी किस तरह से पा सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास बेदारी आई है? बेदारी तो इतने छोटे से स्तर पर आएगी कि उन्हें उसका कभी पता तक न चलेगा। पेंतेकोस्तल लोगों ने कहा था कि ओ एक बड़ी महान बात होने वाली है, मगर वो हो रही है और वे लोग इसे जानते तक नहीं। यही बात है, समझे? हाँ श्रीमान, क्योंकि जहाँ लोथ हो वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे, वहाँ पर ऐसा ही कहा गया है। देह क्या है? वह वचन है, वह वचन है, देह है मसीह। मसीह आप में है जो कि कल आज और युगान युग एक सा है। ये बात कितनी सच है। सारा समस्त वायदों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आप समझ गए? आज के गिरजों की धारणा की तरह कि हमारे यहाँ बड़ी बेदारी का समय चल रहा है। अरे बेदारी किससे आई? प्रतिज्ञा को बदल कर, दूषित करके। आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं जबकि परमेश्वर ने कभी किसी नामधारी धार्मिक संस्थागत गिरजे को कभी भी आशीषित नहीं किया, कभी नामधारी संस्था का प्रयोग उसने नहीं किया। जब एक सुसमाचार आया और लोगों ने उस पर संस्था घटित करी तो वह मृत हो गए। मैं किसी भी इतिहासकार को चुनौती देता हूँ कि वे मुझे दिखाए कि फिर से वह मृत कलीसिया कभी उठकर खड़ी हुई। वो ठीक वहीं मर गई और मरी पड़ी रही। परमेश्वर उस परिवाहक या साधन में से बाहर आ गया और दूसरे में चला गया। इसी तरह से वह लूथर में से मेथोडिस्ट और उनमें से पेंतेकोस्तल में चला गया। अब वो पेंतेकोस्तल में से भी बाहर आकर बीज में चला गया है क्योंकि उसे बीज में ही समाहित होना है। आप कुदरत को नहीं बदल सकते। अन्य कुछ ऐसा नहीं है जो बीज को छोड़कर उसका विकल्प बन सके ताकि बीज स्वयं अपने अनुसार उत्पत्ति कर सके। वह कल आज और युगानुयुग एक सा बने रहने वाला वही परमेश्वर है, वही आग का खंभा, वही चिन्ह, वही आश्चर्य कर्म, वही सामर्थ, वही सारी बातों से भरा युगानुयुग एक सा है। उसने वचन व पवित्र शास्त्र को लिखे और कहे अनुसार वैसे ही जीवन जाहिर किया है। वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। आज रात वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उसे देख सकें और उस पर विश्वास कर सकें। यकीनन देखिए कि सारा ने नामधारी गिरजों की तरह से हाजरा को स्वयं चुना, किंतु उससे काम नहीं बना। क्या बना? नहीं, उसके स्वयं के चुने लोगों का समूह आज भी काम नहीं आएगा। ये धार्मिक शिक्षा पाए डॉक्टर्स, पीएचडी और एलएलडी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे पारिवाहक साधन असफल रहे। लूथर असफल रहा। हाजरा ने क्या कहा? क्या किया? उसने अपने बच्चे को दूसरी स्त्री की गोद में डाल दिया, ये ठीक बात है, ताकि उसके बच्चे को दूसरी औरत पाले। हाजिरा ने ऐसा ही किया था, उसने अपने बेटे, अपने एकमात्र पुत्र को दूसरी स्त्री को, जो उसकी माँ नहीं थी, सौंप दिया कि वो उसे पाले। ऐसा ही लूथर ने किया, जब उसने अपने पुत्र न्यायोचित ठहरने के सूत्र को एक नामधारी धार्मिक गिरजे को सौंप दिया कि वह उसे अपनी मर्जी के अनुसार पाले। उसने गड़बड़ी करे, ये सच बात है। वेस्ली भी सारा की तरह से असफल रहा, उसने बांज वृक्ष के तले पवित्र आत्मा के अलौकिक जन्म पर सारा की तरह से अविश्वास किया। जब वेस्ली को वह अलौकिक बात पता चली, पिंतेकोस्तल काल में जब वेस्ली को अन्य भाषाएं बोलने आदि बातों की पहचान मिली, तो लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। आप सभी तथाकथित चर्च ऑफ क्राइस्ट आदि, आपने ऐसा किया, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन आदि, आप में से हर एक ने नाक भौं सिकोड़ी और पीछे हट गए। ये ठीक है, वेस्ली आपने क्या किया? आपने अपने पुत्र को एक धार्मिक संस्था, एक गिरजे को बेच डाला और वो मर कर नाश हो गया। ये बात एकदम ठीक है, लेकिन सच्चा वचन आगे बढ़ता रहा। वह उस धार्मिक संस्था में रुका नहीं रहा, वह आगे चलकर पिंतेकुस्त में प्रविष्ट हुआ और उस वचन में कुछ और बढ़ोतरी हो गई। वह पहले से अधिक परिपक्व पुत्र बन चुका था, वैसे ही जैसे गर्भ में पहुंचे बीज ने बढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद ही उसकी रीढ़ की हड्डी बनी, फिर फेफड़े आए, सिर व पांव बने, और कुछ समय के बाद वह ऐसा बन गया कि उसका जन्म हो गया। ये ठीक बात है। अतः इसी प्रकार से कलीसिया परिपक्वता की स्थिति तक पहुंची है। वेस्ली ने भी उसी तरह का संदेह किया जिस प्रकार वहाँ पेड़ के तले सारा ने किया था। वहाँ प्रभु का दूत था, परमेश्वर, वह एलोहीम स्वयं मनुष्य रूप में आया था। वह मनुष्य के रूप में था और उसके वस्त्रों पर धूल जमी थी। और उस समय जब सारा 90 वर्ष और इब्राहिम 100 वर्ष का था, उसने पुत्र देने का वायदा किया। और सारा अपने मन में हंस दी थी कि अब मैं और इब्राहिम ठीक स्वास्थ्य में नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा? हम अब नौजवान नहीं रहे और शायद 20 वर्षों से हमारे मध्य वैवाहिक संबंध नहीं है। सारा लगभग 90 वर्ष की बूढ़ी स्त्री थी। उसने कहा, मैं और मेरा पति बूढ़े हैं, क्या मुझे ये सुख होगा? उसमें जीवन उत्पन्न स्रोत मृत है और मेरी कोख सूख गई है, मेरी छाती में नसों में दूध सूख चुका है, किस तरह से मुझे पुत्र उत्पन्न होगा? परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा है, जो भी हो वो पुत्र आ रहा है। ऐसा ही वेस्ली ने किया। उसने सोचा, हम किस तरह से उनको अन्य भाषाएं बोलते और दिव्य चंगाई जैसे अन्य बातों सहित ग्रहण कर सकते हैं, ये हमारे समय के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा था कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा सारे प्राणियों पर उंगलूंगा। उसने ऐसा करने का वायदा किया था और उसने जैसे भी हो ऐसा ही किया। और वेस्ली समूह के गिरजे अपनी छोटी छोटी पराग सरी की बहनों, यानी बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और चर्च ऑफ क्राइस्ट के साथ, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, यूनाइटेड ब्रदरन और अन्यों के साथ ठीक वहीं मर गए और मसीह की कलीसिया आगे बढ़ती चली गई। अब देखिए कि पिंतेकोस्तल लोगों ने क्या किया। उन्होंने भूसी की तरह से स्वयं को संस्थागत बना लिया। उन्होंने वैसा ही किया कि खुद को भूसी की तरह से एक जगह एकत्र कर लिया। ये ठीक बात है, भूसी की तरह से एक तरफ अलग हो गए। पिंतेकुस्त मरियम की तरह से थे। पिंतेकुस्तल पर्व पर देखिए कि मरियम ने क्या किया। मरियम ने कहां गलती करी? एक फसल के पर्व के समय उसे बड़े बड़े पद वाले याजक आदि लोगों की भीड़ मिली और वो अपने पुत्र को भूल गई। वह उसे ढूंढने लगी और कहीं भी नहीं पाया, और वह 3 दिन की यात्रा पर पीछे लौट कर गई, ठीक आधुनिक गिरजों की तरह। लगभग 50 या 75 वर्ष पहले गिरजों ने उसे छोड़ दिया था। देखिए कि 50 या 75 वर्षों पहले ऐसा हुआ। उसे फसह के पर्व के समय वहीं छोड़ दिया गया था। 3 दिन तक खोजते खोजते मरियम व यूसुफ वहां वापस पहुंचे थे। मरियम ने उसे काफी ढूंढा मगर वो नहीं मिला। बाद में वो उसे वहां मिला। उसे वहां क्या मिला था? उसने उसे मंदिर में पाया और वहां वह याजकों आदि से खुदा के वचन के बारे में वाद विवाद कर रहा था, और ठीक उन याजकों के सामने और उन उच्चाधिकारियों के सामने मरियम ने पर्दा गिरा दिया। उसने ठीक वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने खुद को उसकी माँ बताया, परमेश्वर की माँ कहा। एक माँ तो बेटे से अधिक बुद्धिमान गिनी जाती है। और मरियम ने कहा, मैं और तेरा पिता तुझे रात दिन आंसू बहाते हुए ढूंढ रहे थे। क्या कहा? तेरा पिता और मैं। वह ये दावा कर रही थी कि यीशु का जन्म अलौकिक रीति से नहीं हुआ था और यूसुफ यीशु का पिता था। उसने उसके अद्भुत अलौकिक जन्म को अस्वीकार कर दिया था। उन पिंतेकोस्त लोगों ने बस अन्य भाषाएं बोलने की बात को ही पकड़ लिया। वे वचन के जन्म लेने का इनकार कर गए। ठीक ऐसा ही किया गया है कि वे वचन का बस इतना भाग तो ग्रहण करते हैं मगर बाकी भाग को ग्रहण नहीं करते। इस तरह से मरियम की तरह वचन के जन्म का इनकार कर दिया गया। मगर देखिए, इसके बाद और कोई नामधारी गिरजा नहीं बनाया जाएगा। देखिए, वचन केवल 12 वर्ष की आयु का था। वह केवल एक छोटा सा छोटी सी चीज था जो छिलके के भीतर था।
उसने
कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। वचन ने गिरजे की गलती को वही सुधार दिया था। लोग कहते हैं, तुम लोग ये सब क्यों किस लिए कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने द्वार बंद कर लेंगे और तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? यकीनन यकीनन यही सच्चा अलौकिक आनंद है। मरियम ने यीशु के लिए दावा किया कि वह यूसुफ का पुत्र और एक साधारण मनुष्य है। अथवा पेंतेकोस्त ने क्या किया? केवल उसे तीन व्यक्तित्व में से एक जाना, मगर वह तीन में से एक नहीं था। वह तो तीनों स्थितियों को अपने में समाहित किए था। मगर पेंतेकोस्त तो लोगों ने कहा कि ओ हाँ, वह पिता का और पवित्र आत्मा का पुत्र है। उफ, कैसी बात है। लेकिन वास्तविक सत्य वचन कहता था कि वह तीन नहीं है, वरन वे तीनों एक ही हैं। तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते जो उसे तीन नहीं बनाता वरन एक बनाता है। ध्यान दें कि इस भूसी वाले साधन या परिवाहक के बाद अब और कोई भी परिवाहक या मात्र गिरजे, नामधारी गिरजे आदि नहीं होंगे, क्योंकि भूसी के बाद और कुछ आना बाकी नहीं रहता सिवाय इसके कि गेहूं का दाना आया। क्या ये बात ठीक है? और तब बस दाने का आना बाकी रह जाता है और वह दाना वैसा ही होता है जैसा जमीन में बोया गया था। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। दुल्हन को वही पवित्र आत्मा मिलता है ताकि वो वैसे ही काम कर सके जो यीशु ने किए थे, और यही दाने का फिर से पैदा होना है। हालांकि वचन बालकपन की स्थिति में था, मगर उसने अपने बारे में कहा था, तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के कामों में लगे रहना जरूरी है। और ठीक यहीं पर सुसमाचार का भेद छिपा है। ठीक बात है, पिता का काम। अब पिता के काम क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि उसके लिए पिता के कौन से काम थे जो उसे करने थे? यशायाह के कहे वचन को पूरा करना कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। उसे यशायाह के उस वचन को भी पूरा करना था कि तब लंगड़ा हिरण किसी चौकनिया भरेगा, और अन्य बातें उसे पूरी करनी थी जैसे मूसा ने कहा था, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम में से मेरे जैसे एक नबी को उठा खड़ा करेगा। यही पिता के काम थे कि वह वचन को पूरा करे। भाई, अगर उन डंठल सरी की शारीरिक स्त्रियों के द्वारा वो बीज आगे लाए गए, तब इन आत्मिक गिरजे रूपी महिलाएं जो डंठल की तरह से हैं, इनको क्या करना चाहिए? गिरजों का अर्थ स्त्री और स्त्री का अर्थ गिरजा होता है। क्या ये बात ठीक है? तब अब क्या करना है? गेहूं का दाना पुकार कर कहेगा, हमें अपने पिता के काम करने हैं। हाँ श्रीमान, उसे क्या करना चाहिए? मलाकी 4 अध्याय को जीवंत जाहिर करना चाहिए। लूका 17:30 को जीवंत बनाना चाहिए। इब्रानियों 13:8 को जीवंत बनाना चाहिए। संत यूहन्ना 14:12 को जीवंत बनाना चाहिए। इसके सारे वचन को जीवंत प्रकट करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय को जीवंत प्रकट करना चाहिए। हमें उसमें दिए सातों मोहरों के भेद खोलने की बात को ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर के गुप्त भेदों के प्रकट होने और सर्प बीज आदि सर्प वंश आदि वचनों को जीवंत प्रकट करना चाहिए। विवाह और तालाक और अन्य भेदों को जो विगत वर्षों में खंभे के अंदर छुपे रहे हैं और धर्म शास्त्र ज्ञाताओं आदि की समझ से छुपे रहे हैं, मगर इस समय हमारे समय में खोले गए हैं, उनको ग्रहण करके जीवंत जाहिर करना है। यही पिता के काम है। आप सोचते हैं कि क्या वे लोग इन बातों को ग्रहण करेंगे? वे लोग तो बहुत सम्मानीय नागरिक बनकर ये कहते हैं, हमारा नामधारी गिरजा ऐसा नहीं सिखाता, मगर पवित्र शास्त्र यही बताता है। ये ठीक बात है, परमेश्वर इन बातों को सत्य प्रमाणित और जीवन प्रकट करता है। वास्तव में ऐसा ही है। इस काल का वचन पूरा हो रहा है जबकि सातों मोहरें खुल चुकी हैं। वे मोहरें ये साबित कर रही हैं कि यह नामधारी गिरजे वचन को आगे लाने के साधन मात्र थे। ये भी पिता के कामों में से एक काम है। पिता का काम ये भी है कि अब वह इन नामधारी गिरजों को यह दिखाए और प्रमाणित करे कि यह प्रभु के नहीं है। वे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए तंत्र हैं जो वचन का इंकार करते हैं। ये ठीक बात है। आप ध्यान दें, आप कहते हैं कि मरियम, महान कुमारी मरियम। सलीब पर से यीशु ने मरियम को माता नहीं कहा, उसने उसे नारी कहा। उसने परिवाहक या साधन बताया, माँ नहीं कहा। सच बात है कि वह वचन को लाने का माध्यम थी, स्वयं वचन नहीं थी, यीशु वचन था। ओह जी हाँ, ये भी ध्यान दीजिए कि उसे यीशु के संग उसके जी उठने में नहीं गिना गया। यीशु मर गया और फिर जी उठा क्योंकि वह वचन था। मरियम केवल परिवाहक या साधन थी। वह मर गई और आज तक कब्र में है, ये सच बात है। अतः वह केवल एक साधन थी, उसकी माँ नहीं थी, परमेश्वर नहीं थी। वह गिरजों की तरह से वचन को लाने वाली साधन थी, ये ठीक बात है। वचन ये बताता है कि वह बस एक माध्यम थी, वचन नहीं थी। हम बस इतना और कहकर बात खत्म करेंगे। ओ पेंटिकॉस्टल बाजो, तुम गिद्धों की तरह से कूद रहे हो, जैसा कि बाकी सबने किया। तुम दुनियादारी के भागीदार बन गए हो। तुम भक्ति का भेष इस तरह से भरे हो कि अगर हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दो, लेकिन तुम उसकी सामर्थ का इनकार करते रहते हो, जैसे कि नबी यहाँ बताता है। परमेश्वर के वचन में इस अंतिम समय की लौदीकिया की कलीसिया के लिए जो कहा गया है, तुम उसकी सिद्ध मिसाल हो। कहा गया है कि तू नंगा, अंधा, निर्धन, अभागा और तुच्छ है, मगर ये बात जानता तक नहीं। तेरा दावा है कि तू धनी और महान हो गया है और किसी चीज की जरूरत तुझे नहीं है, और तू नहीं जानती कि नबी के भाई की तरह के बाज की स्थिति से बदलकर अब नीचे गिर गई है, ताकि परमेश्वर का वचन तेरे बारे में ठीक साबित हो जाए। वह अब एक गिद्ध बन गई है और अपने लोगों को मृत बासी धार्मिक शिक्षा रूपी खरगोश खाने को दे रही है। ये बात एकदम ठीक है। अरे जाग, उठ। किस तरह से आप उकाबों के संग गिने जाकर उत्तराधिकारी ठहर सकेंगे? कैसे ऐसा होगा जब इस महान समय में ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे हैं और दुल्हन का उठाया जाना निकट है? ओ मसीही लोगों, हे विश्वासियों, अगर आप आधे विश्वासी हैं तो सभाओं में कुछ समय और आते रहना। क्या आएंगे? हमारे पास यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं सोचता हूँ कि खुदा आपको बताना चाहता है। समय काफी देरी हो चुकी है और मैं बात जारी नहीं रख सकता। मुझे खत्म करना है और हो सकता है अपनी बात कल रात पूरी करूँ। मगर देखिए, कुछ क्षणों के लिए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। मैं ये नहीं चाहता कि आप इस बात पर ध्यान दें कि मैं किस प्रकार की व्याकरण का प्रयोग कर रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप उस बात पर ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ। ये बातें एकदम सरल हैं और समझी जा सकती हैं, अगर आप समझना चाहें। मेरा ऐसा विचार है, आप आज रात यहाँ हैं और अगर आपको पवित्र आत्मा मिलने का अनुभव नहीं हुआ है, आप कहेंगे मैंने तो आत्मा में नृत्य किया है और चारों ओर उछला कूदा हूँ। जी हाँ, बाज भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा करना कव्वे और गिद्ध के व्यवहार करने के समान होता है। मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं। आप अपना प्रतिदिन का भोजन कहाँ से पाते हैं? क्या आपका भोजन परमेश्वर की ओर से है, अथवा आप वर्षों पुराने मृत बासी भोजन को ही खा रहे हैं? क्या आपका अनुभव आज रात भी उसी बात पर आधारित है जो आपने वर्षों पूर्व जानी थी, या ये नया ताजा मन्ना है जो स्वर्ग से आज रात गिराया गया है और आप उसी भोजन को खा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल और भी उत्तम भोजन मिलेगा? अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, अब जबकि आपके सर झुके हैं, आंखें बंद हैं और हृदय उसके सामने झुका है, आप खुद से ये साफ साफ सवाल पूछिए। यह बात मुझसे नहीं, आप परमेश्वर से कहिए और इसकी गवाही स्वरूप अपने हाथ उठाइए। कहिए कि परमेश्वर मेरे प्राण और आत्मा को इस प्रकार से बदलकर नियंत्रित कर कि मैं केवल परमेश्वर के वचन के भोजन पर ही निर्भर रह सकूं। आप अपने हाथ उठाएं और ऐसा ही कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। मैं कह नहीं सकता कि आज रात यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मैं भीड़ का अंदाजा लगाने में कमजोर हूँ, मगर मैं कहूँगा कि लगभग कम से कम एक तिहाई लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, और इस वजह से हाथ उठाए हैं कि वे चाहते हैं कि उनके प्राणों की दशा हालत में बदलाव आए। हम अब जब की दुआ करते हैं और अपने सिरों को झुकाए हैं, तो इन्हें दुआ में याद रखें। प्रिय परमेश्वर, मैं तो केवल वचन प्रचार करने भर के लिए उत्तरदायी हूँ, और बस ये थोड़े से छोटे छोटे दृष्टांत या नमूने उदाहरण वगैरह देकर इन्हें समझा पाया हूँ, ताकि लोग देख सकें कि एक प्रकार के लोग दूसरे प्रकार के लोगों के संग उत्तराधिकारी या वारिस नहीं हो पाएंगे। हमें मालूम है प्रभु की अंत के दिनों में ऐसे लोगों को होना है जो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, और यीशु के आने के समय कुछ वैसे ही लोग यहाँ होंगे। हम तो आज रात भी यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं लगभग 30 या 33 साल पुरानी बात याद कर रहा हूँ। उस रात लगभग इसी समय 9:30 या 10 बजे मैं आपके सामने झुका था, अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था जो नाश हो गए थे। आज रात हे पिता, मैं बहुत से पिताओं, माताओं, भाइयों और बहनों के लिए दुआ कर रहा हूँ। प्रिय परमेश्वर, क्या आप हम पर दया नहीं करेंगे? मेरे पिता के लिए तो अब बहुत देरी हो चुकी है कि वह उद्धार के लिए कुछ कर सकें। वे जीवन की सीमाओं के उस पार जा चुके हैं, और प्रभु शीघ्र ही हम भी इस जीवन सीमा को पार करने वाले हैं। मुझे खुद भी उस पार जाना जरूर है। यहाँ हरेक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, लड़के और लड़की को इसी पथ पर से गुजरना है, और हमें उसका हिसाब देना होगा जो व्यवहार हम परमेश्वर के वचन के प्रति करते हैं। दाऊद की नजर में वो मनुष्य कितना छोटा था जो उस पर थूक रहा था। इन लोगों की विचारधारा कितनी तुच्छ है जो यीशु पर थूक रहे थे, जो कि स्वयं वचन था। जिन्होंने उसे छेदा था, जब वो महिमा में वापस आएगा तो वो कितने तुच्छ नजर आएंगे। वे लोग जो यहाँ से ये सब सुनकर दूर चले जाते हैं, वे किस तरह से निम्न विचारों वाले समझे जाएंगे जब उन्हें ये सब सच्चाई बड़े बड़े ग्रीक शब्दों आदि में नहीं दिखाई देगी, वरन सीधी सादी कुदरत में नजर आएगी जो यही सिखाती है कि खुदा ही सृष्टि करता है। वे देख सकते हैं कि ये नामधारी गिरजे वचन को आगे लाने वाले साधन मात्र थे। वे वचन का वो रूप भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम कैसे समय में रह रहे हैं, और ये भी कि आज का समय कटनी का समय है। प्रिय परमेश्वर, होने दे कि हम दुनिया की किसी मूर्खतापूर्ण बात के लिए इन सच्चाइयों से अपना मुंह न मोड़े। आज रात हम प्रभु को अपने पूरे हृदय से ग्रहण करें। प्रभु, मेरे अंदर एक भली आत्मा रच दे, जीवन की आत्मा बना दे, ताकि मैं तेरे संपूर्ण वचन पर विश्वास कर सकूं और यीशु को ग्रहण कर सकूं, जो कि स्वयं वचन है, जो कि कल आज और युगानुयुग एक सा है, तथा मैं वचन के उस भाग पर विश्वास कर सकूं जो इस काल के लिए दिया गया है। प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार कर, मैं इसे यीशु के नाम में मांग लेता हूं। अब मैं आप में से हर एक से कुछ पूछना चाहता हूं। आप इन बातों पर सच्चाई से विचार कर रहे हैं, हमारे पास कोई गिरजा नहीं है जिसके सदस्य आप बन सकें। हमारे पास तो एक जलकुंड है, तालाब है, जिसमें बपतिस्मे दिए जाते हैं। लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अगर अभी तक आपने मसीही बपतिस्मा नहीं लिया है, मसीही बपतिस्मा छींटे डालने या पानी उड़ेलने से नहीं होता, वह डुबकी का होता है। वह बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में नहीं दिया जाता, बल्कि यीशु मसीह के नाम में दिया जाता है, जैसा कि संपूर्ण कलीसियाओं में और इतिहास में तब तक दिया जाता रहा था, जब तक कि कैथोलिक चर्च ने सन 303 एडी में उसे तीन ईश्वरों और त्रि एकता की तीन उपाधियों में बदल न दिया। अगर अभी तक आपका मसीही बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो कल सुबह 10 बजे यहाँ जलकुंड पर सारी तैयारियां हैं, वस्त्र आदि हैं और आपकी प्रतीक्षा है। क्या आप यहाँ आकर हमसे नहीं वरन यीशु से स्वयं को जोड़ना चाहेंगे? हमारे पास तो यहाँ एक गिरजा तक नहीं है कि आपकी देखभाल कर सकें। आप जिस किसी भी गिरजे में चाहें जा सकते हैं, जिस भी गिरजे से आए हैं उसी में बने रह सकते हैं, मगर केवल इस वचन पर कृपया विश्वास कीजिए। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? कहिए आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर किसी तरह से भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं तो हम तैयार हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ बीमार लोग हैं। आज रात हमारे पास प्रार्थना करने का समय तक नहीं बचा है। हो सकता है बीमारों के लिए प्रार्थना कर पाएं। आप में से हर एक मेरी मदद करे, और जिस किसी के भी निकट आप बैठे हैं, आप अपने हाथ उस व्यक्ति के ऊपर रख दें। और इसमें शक नहीं कि आपने अपने हाथ एक उकाब पर रखे हैं, ऐसे उकाब पर जो शायद कहीं और किसी गिद्ध का भोजन कर रहा था और अब बीमार हो गया है। वे लोग उस भोजन को अब और आगे नहीं खाना चाहते, वे उसमें से बाहर आना चाहते हैं। वे बीमार हैं और उस दशा से तंग आ चुके हैं। आपने आज रात यहाँ बैठकर ये देखा कि उकाब वास्तव में क्या खा सकता है। वे वचन खाते हैं और उनके बीच में जीवित मसीह रहता है, जो स्वयं को जीवंत प्रकट करता है और जो कल आज और युगानुयुग एक सा है। वे भूसी के साथ उत्तराधिकारी नहीं होना चाहते। भूसी को तो जलाया जाना है, सारे सरकंडों छिलकों को जलना है। दुल्हन एकत्रित करी जा रही है ताकि गेहूं भूसी से अलग इकट्ठा हो सके। प्रभु आपके संग हो। यहाँ उनमें से कुछ लोग बीमार हैं, शारीरिक रीत से बीमार हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। काबो, आप अपने उकाब भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें, जबकि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। काश परमेश्वर का आत्मा आप पर उतर आए। याद रखिए कि मैं आपको उकाब का भोजन दे रहा हूँ, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। वह अपने नबियों को उकाब कहकर पुकारता है, वह खुद को भी उकाब कहता है, वह यहोवा उकाब है। आप जबकि अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे स्वर्गीय पिता, आपने अपने वचन में अपनी कलीसिया को जो अंतिम आज्ञा दी, वो यही है कि तुम सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। साधारण रूप से आज्ञा यही थी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका। विश्वास करने वालों में यही चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, अगर वे जहरीली वस्तुएं भी पी जाएं तो उन्हें कुछ हानि ना होगी, वे सांपों को उठा लेंगे और उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हे यहोवा उकाब, प्रभु आज रात अपने बच्चों को वचन का भोजन दीजिए, उन्हें उसकी जरूरत है, उन्हें इसी तरह के भोजन की जरूरत है, उन्हें ये बात जानने की आवश्यकता है कि असली भोजन क्या है। यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन क्या है? आपने वादा किया है कि अगर वो अपने हाथ एक दूसरे पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, अब हमारे अंदर से सारे संदेह और अशुद्ध विचारों को आप दूर कर दीजिए। हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन रूपी उकाब के भोजन को पाएं। आप ऐसा होने दें प्रभु। इन लोगों में से हर एक तरह की अशुद्ध आत्मा को हटा दें। भय और संदेह की प्रत्येक दुष्ट आत्मा को दूर करें। नामधारी गिरजों वाले सारे दावे और आदतों को बदल दें। इन लोगों के इस झुंड में से यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग दुर्बलता दूर करी जाए। होने दे प्रभु के इसी क्षण से ये लोग स्वतंत्र किए जाएं, ताकि ये उस उकाब के भोजन को खा सकें, जिसके लिए हमें विश्वास है कि आप इस सप्ताह हमें देने वाले हैं। जैसा कि आपने वायदा किया था, आप उन मोहरों को खोलकर हमें वे सारे गुप्त भेद बता रहे हैं जो जगत की उत्पत्ति के पूर्व से छिपे रहे हैं। ये लोग पिता आपके हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। वे सभी जो विश्वास कर रहे हैं और वचन को ग्रहण करते हैं, वे खड़े हो जाएं और कहें, जो वादा परमेश्वर ने किया है मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसे स्वीकार करता और ग्रहण करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है, सभी लोग खड़े हैं, ये बहुत अच्छा है। पियानो पर धुन बजाएं, मैं उससे प्रेम करता हूं। आइए उसके लिए हम ये भजन गाएं, मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। सारे लोग एक संग गाएं।
If you do, let's raise our hands. I love him. If I ever loved him, and were just my salvation
क्या वो अद्भुत नहीं है? आइए हम आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएं। भाई उकाबो, बहनों, घूमकर एक दूसरे से हाथ मिलाइए जबकि हम ये गीत गाते हैं।
Let's raise our hands again to him.
कैसे जानेंगे, दुनिया किस प्रकार जानेगी कि आप यीशु से प्रेम करते हैं? तब जानेगी जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। देखिए कि खुदा आपके विश्वास को देखता है, दुनिया आपके व्यवहार को देखती है। अब आपस में एक दूसरे के प्रति नम्र बने और आपस में प्रेम रखें। एक दूसरे से बातचीत करें, सब्र और धीरज रखें। और बपतिस्मे के बारे में कोई आगे सूचना और होगी तो दे दी जाएगी। जो लोग बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ कमरे आदि नहीं हैं। वेदी की इस पुकार में अगर आप मान गए हैं कि बपतिस्मा लेना ठीक है और ये कि यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है और आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो कल जाकर उसके नाम में बपतिस्मा लीजिए। वहाँ कोई न कोई रहेगा जो आपको इस बारे में निर्देश देगा। आपकी जो भी सहायता इस बारे में हम कर सकते हैं करेंगे।
Raise your hands way out in the praise him. Just my salvation.
कल रात तक के लिए मैं हमारे पादरी भाई नेविल को सभा सौंपता हूँ।